आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय परमेश्वर, आज हम आपकी महान उपस्थिति के उंडे ले जाने के लिए जो पहले ही हमारे मध्य में है बहुत ही धन्यवादित हैं, और हम इसकी और अधिकाई की आशा इस दोपहर पश्चात करते हैं। हम इस सुंदर गाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो कि इस भली मसीही महिला से, जिसने ये भजन गाया और आपका आत्मा नीचे आया और बाद में अनुवाद। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे ही होने दें। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हम में से प्रत्येक को आशीषित करेंगे और हमारे हृदय जब हम ये होते देखते हैं आनंद से भर जाएं। प्रिय परमेश्वर, इस दोपहर बाद हम प्रार्थना करते हैं, यदि यहाँ कोई ऐसा है जो आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, होने पाए इस घड़ी में वे अपना अंतिम निर्णय लेंगे और आपके पास आएंगे, नए जन्म के द्वारा इसे प्रदान करें। प्रभु, हम सबको आशीष दें जो कि लंबे समय से इस मार्ग पे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने वचन के द्वारा नई चीजें सिखाएंगे। प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा हमें एक अच्छी समझ दें। वो आए और वचन का अनुवाद करे। हमारे पास केवल आत्मा ही है कि अनुवाद करे। हम प्रार्थना करते हैं कि आज वो हमें प्रदान करेगा। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये पर्याप्त है। क्या समय है? मैं इससे अच्छा स्थान नहीं जानता जब तक कि ये स्वर्ग ना हो। हम उसके अभिषेक का अनुभव कर रहे हैं जो अब है। देखिए, हम मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में एकत्र होकर बैठे हैं। बहन फ्लोरेंस को परमेश्वर आशीष दे, और वो दुख और छाया के समय से होकर निकल रही है। उसके पिता को ले लिया गया और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उस बालक को आशीष दे। भाई देमास के दोनों कंधों पर बोझ है, और इन बेदारी सभाओं का बोझ और आदि आदि, उसे हमारी प्रार्थनाओं की भी आवश्यकता है। भाई शेकेरियन, परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई कॉल विलियम्स, निश्चय ही मैं आपके साथ इस बेदारी सभा में, मैं आनंदित हूँ इन सब अच्छे भाइयों के बीच, और मुझे कुछ से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और अब ये मेरी सभा का अंतिम भाग है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसलिए क्यों, मैं आशा करता हूँ कि मैं इनमें से कुछ अच्छे लोगों से हाथ मिलाने योग्य होऊंगा और उनसे मिलूंगा, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि उनके संग अनंतता बिताऊंगा एक अच्छे देश के अंदर। बस एक छोटी सी बात, मैं आशा करता हूँ मुझे गलत नहीं समझा जाएगा, और न ही एक संयोग, मैं नहीं सोचता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये समयोचित था कि बीते कल मुझे मेरे एक मित्र के द्वारा उपहार दिया गया, डैनी हेनरी। वो एक लड़का था। एक दिन एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन की सभा कैलिफोर्निया में, मेरी एक सभा थी। मैं समय की स्थिति के विरोध में कठोरता से बोल रहा था, और मैं आशा करता हूँ हर कोई समझता है, हृदय में कोई बुराई नहीं, ये वो नहीं, नहीं, निश्चय ही आप समझ जाएंगे, मैं उस तरह से मतलब नहीं था, परंतु मुझे वही कहना था जो मेरे पास कहने को आता है। और फिर इसके बाद ये व्यक्ति एक बैप्टिस्ट भाई, और मैं सोचता हूँ ये किसी सिने कलाकार का रिश्तेदार है, वो आया और अपनी बाहें मेरे गले में डालकर बोला, भाई ब्रैनम, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ, और उसने फ्रांस की भाषा बोलनी आरंभ कर दी, और वो लड़का फ्रांस भाषा का एक शब्द भी नहीं जानता, और कोई एक भारी भरकम स्त्री खड़ी हुई, मैं विश्वास करता हूँ कि वो लुधियाना से थी, उसने कहा ये तो फ्रेंच है। तब वहाँ एक व्यक्ति था, बोला ये तो फ्रेंच है, और उन्होंने ये जो था उसे लिखा, मेरे पास यहाँ मूल प्रति है। और तब ऐसा हुआ, एक युवा व्यक्ति पीछे से आगे को चलता आया, उनके लेख देखना चाहता था, और वो यूएन के लिए फ्रेंच का अनुवादक था, बिल्कुल सही फ्रेंच। अब मैं इस लेख को पढ़ना चाहता हूँ, और ये उनमें से एक की मूल प्रति है, और ये इस व्यक्ति की ओर से है जिसने अनुवाद किया था। इस समय मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, ली डुक्स, विक्टर ली डुक्स, वो पूरी तरह से फ्रांसीसी है। अब यहाँ संदेश है, क्योंकि तूने सकरा मार्ग चुना है, कठिन मार्ग तू अपने ही चुने हुए में चला। तूने सही और परिशुद्ध निर्णय लिया, ये मेरा मार्ग है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के कारण स्वर्ग का एक बड़ा भाग तेरी प्रतीक्षा करता है। तूने क्या ही शानदार निर्णय लिया है। ये अपने आप में वो है जो देगा उस जबरदस्त जय को दिव्य प्रेम में होने देगा। जब मुझे ये मिला, आप जानते हैं, जब मैंने लोगों को पहली बार भाषा में बोलते सुना, मैं कोई भी आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वास्तविक देखी है, परंतु मैं सदा आश्चर्यचकित रहा। परंतु जब ये घटित हुआ और जानते हुए कि इसके पीछे कार्य अधिकार क्या था, मुझे मालूम था कि ये परमेश्वर की ओर से आया है। तब उसका भाई यहाँ बैठा है, एक प्रसिद्ध वकील, मुझे डैनी की ओर से एक उपहार दिया। डैनी होली लैंड के लिए गया हुआ है और वो वहाँ कब्र पर लेटा, वहाँ जहाँ यीशु को उसकी मृत्यु के पश्चात रखा गया था। और जब उसने ये किया, उसने कहा, उसे मेरा विचार आया और परमेश्वर का आत्मा उस पर आया और वो कलवरी पहाड़ पर गया जहाँ क्रूस दी गई थी और पत्थर का टुकड़ा लिया और वो वापस आया और मेरे लिए आस्तीन की एक जोड़ी बटन बनाए और वास्तव में मैंने उन्हें सजा कर रखा है। और अब निसंदेह डैनी को ये नहीं मालूम था, परंतु इस प्रातः जबकि बाहर प्रार्थना में मैंने उन आस्तीन के बटनों को देखा, यदि आप ध्यान देंगे उनमें से लहू के दाग हैं और एक सीधी रेखा भी उन दोनों में आर पार है। और इस संदेश में जो उसने परमेश्वर की ओर से दिया, सीधा और सकरा मार्ग, इसमें ठीक सही बैठता है। मैंने सोचा ये एक प्रकार से शुभ हो सकता है, या मैं निश्चय ही डैनी का धन्यवाद देता हूँ। भाई उसको ये बताना, मैं इसकी कितनी तारीफ करता हूँ। और दूसरी विचित्र बात, उस प्रातः मैंने अपनी पत्नी से पूछा, मैंने कमीज पहनी, इसमें बटन लगाने हैं, और उसने कहा, मैं आपके बटन लाना भूल गई, इसलिए प्रभु ने मुझे कुछ दिया है। ओ, ये शानदार जीवन है, क्या नहीं भाइयों? सुसमाचार की सादगी में चलना, और फिर इसकी सादगी जो मैं जानता हूँ कि ये महानतम बात है, मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता। ये होने के नाते इसे साधारण बनाया गया कि मुझे इसमें आने का अवसर मिले और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं भी देखूं। अब इस दोपहर बाद मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि आज रात्रि आप लोगों को आराधनालयों में जाना है। मैं सोचता हूं आप सारे अतिथि यहाँ प्रचार मंच पर चारों ओर देखें, इन सेवकों को देखें, और ये आप लोगों को अपनी रात्रि सभा में देखकर प्रसन्न होंगे, वे आपके लिए भला करेंगे, कोई संदेह नहीं। आज प्रातः आप लोग नगर में संडे स्कूल जाएं। और अब जबकि हमारी बेदारी सभाएं हो रही हैं, पुल बिजनेसमैन लोगों की, मैं सोचता हूं हमें अपनी कलीसियाओं से समर्थन देना चाहिए, क्योंकि वहीं जहां हमारे बिजनेसमैन जाते हैं। और अब ये परमेश्वर का भवन है और मैं आशा करता हूं कि आज रात्रि आप कलीसियाओं में जाएंगे। कल रात्रि बेदारी सभाओं की समाप्ति है और मैं विश्वास और मैं समझता हूं उन्होंने वक्ताओं की घोषणा कर दी है जो कि मुझे यहां होना है। प्रभु ने चाहा कि संदेशों को सुनूं। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। अब मैं दावा नहीं करता कि मैं प्रचारक हूं। मैं तो एक प्रकार से, मेरे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है कि अपने आप को प्रचारक कहूं। प्रचारक, जब आप ये कहते हैं, वे आपसे आशा करते हैं कि आपके पास कुछ एक डिग्रियां होंगी कॉलेज से, और पास कुछ भी नहीं, ये छोटी सी गोफन, समझे। मैं बीमार भेड़ के पीछे जाने का यत्न कर रहा हूँ, यदि मैं सकूं तो कि उन्हें पिता की चरागाह में वापस ले आऊं। यदि मैं गलती करूं तो मुझे क्षमा करना, मैं धर्म विज्ञानी नहीं हूं। मैं धर्म विज्ञानियों की आलोचना नहीं करता। धर्म विज्ञान अपने में सही है, यही जिसकी हमें आवश्यकता है, परंतु कभी कभी मैं परिस्थितियों की आलोचना करता हूं जिसमें हम हैं। इसका अर्थ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, ये बस एक संदेश है। मेरी इच्छा है ये देने के लिए, मेरा नहीं था, ये मुझे टुकड़े टुकड़े कर देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने बालकों के लिए कैसा अनुभव करते हैं, समझे। क्या आप इस बात को पसंद नहीं करते कि अपने बच्चों को फटकार लगाएं, चिल्लाएं या कुछ और? मैं भी अभिभावक हूं, मैं जानता हूं कि इसका क्या अर्थ है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे क्षमा करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार करें, जब आप इस दोपहर बाद बैठते हैं आपसे एक स्वीकृति चाहता हूँ। यहाँ थोड़ी सी टिप्पणियाँ हैं, यहाँ कुछ नोट। जैसा मैंने आपको बताया, मुझे ये करना है कि अपने पवित्र वचन को लिखूं। हुआ करता था कि मैं पूरी बाइबल का उल्लेख दे सकता था, परंतु अब नहीं। बहुत सारी कठिन लड़ाइयों में से होकर निकला हूँ, उससे बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे इस दोपहर बाद थोड़ा सा सुनेंगे और सच में अपने हृदय को खोलेंगे और समझने का यत्न करेंगे कि मैं खोद कर क्या निकाल रहा हूँ। तब मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा होगा, विशेषकर नगर के सेवक गण और विभिन्न स्थानों के। मैं विश्वास करता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे, और आप ये करते हैं, आप उसी प्रकार से करते हैं जिससे मैं जैसे मैं करता हूँ। जब मैं अपनी मनपसंद शैली का घालमेल खाता हूँ, अपने कुछ मनपसंद भोजन चिकन, परंतु जब एक अच्छी चेरी का घालमेल खा रहा हूँ और बीज मेरे मुंह में आते हैं, तो मैं उस कचौड़ी को खाना बंद नहीं करूँगा। मैं बस बीज को फेंक देता हूँ और उस कचौड़ी को मैं खाता रहता हूँ, समझे। मुर्गी की हड्डी मेरे मुंह में आती है, मैं चिकन को फेंक नहीं देता, बस हड्डी को फेंक देता हूँ। इसलिए क्या हो यदि मैं कुछ कहूँ जिस पर आप सहमत ना हो किसी भी समय, तो उस भाग को अलग कर दें और परंतु उस वास्तविक अच्छे वाले को देखें। निश्चित हो ये हड्डी है, समझे। और तब मैं ये कह सकता हूँ यदि ये बीज है इसमें रखें, ये नया जीवन लेकर आता है। इसलिए ध्यान पूर्वक देखें और होने पाए प्रभु आपको आशीष दे। उस रात्रि भाई कॉल विलियम्स ने कुछ कहा स्वतंत्र हो जाने के विषय में, बीमारों के लिए प्रार्थना करना, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छा होगा, परंतु हम यहाँ इसके लिए नहीं है कि प्रार्थना पंक्ति बुलाएं। और मैं नहीं जानता कि भाई ओरल या किसी दूसरे भाई ने कभी बेदारी में सभा में प्रार्थना पंक्ति बुलाई है या नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने इसकी कोशिश की है दो या तीन बार, परंतु अक्सर यदि भीड़ इस प्रकार है तो आपको प्रार्थना पत्र देने ही है ताकि व्यवस्थित रूप में इसे करें, क्योंकि आप नहीं कर सकेंगे। ये कोई तमाशा घर नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है, समझे। ये इसी के लिए समर्पित है, और हम वे दबाते धक्का देते, और आपके पास कार्ड है, आप उन्हें तरीके से पंक्ति में ले आते हैं। बिली ने मुझसे पूछा, कहा क्या मैं जाकर और कार्ड दे दूं? लोग मुझसे प्रार्थना पत्रों के लिए पूछ रहे हैं। मैंने कहा नहीं बिली, हम पवित्र आत्मा पर छोड़ दें जो वो करना चाहे, समझे। ये देखिए, उसे विश्वास बनाने दें और वही चंगा होने दें जहाँ आप हैं, समझे। परंतु सुसमाचार में दिव्य चंगाई छोटी चीज है, और मुख्य के ऊपर छोटी कभी नहीं रख सकते। कोई भी इस बात को जानता है, परंतु वे ये फंसाने का कांटा है जो लोगों को खींचता है कि परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति में विश्वास करें, और फिर उसके द्वारा यदि वे उसकी उपस्थिति को पहचान सकें तो वे ठीक हो जाते हैं। देखिए, विश्वास के द्वारा, इस पर विश्वास करके। अब मैं कुछ परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाहता हूँ, नए नियम में से, और फिर मैं उस नए नियम से कुछ मूल पाठ लेना चाहता हूँ और ये पवित्र लेख, और इस दोपहर बाद एक विषय पर थोड़ी देर बोलना चाहता हूँ। और आज रात्रि आप लोगों को अधिक समय तक सभाओं में नहीं रोकना चाहता हूँ, परंतु याद रखें, मैं आशा करता हूँ कि मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान दें यदि आप देंगे तो। अब इसके पहले हम ये करें, आइए हम फिर से अपने सिरों को झुकाएं। आप जानते हैं, हम बहुत गा सकते हैं, हम बहुत चिल्ला सकते हैं जब तक कि गला ना बैठ जाए, और हम गलत समय पर गा सकते हैं या गलत समय पर चिल्लाएं। परंतु यहाँ एक बात है, हम कभी भी जब प्रार्थना करते हैं हम नियम से अलग नहीं होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मनुष्य अपने पवित्र हाथों को उठाकर हर कहीं निसंदेह प्रार्थना करे। पिता, मरणहार के लिए ये एक महान सौभाग्य है कि अपनी आंखें बंद करके अपना हृदय खोले और आपसे बातें करें, और हम जानते हैं कि आप सुनते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा यदि तुम पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे ये तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ये शर्त पर है यदि हम इसका संदेह ना करें। इसलिए पिता, हमारी सहायता करें कि विश्वास से करें। इस दोपहर बाद हमारे आवेदन ग्रहण किए जाएंगे, और होने पाए कहीं भी संदेह की छाया कभी ना हो, परंतु ये घटित होने पाए वे चीजें जो हम मांग रहे हैं, और ये परमेश्वर है, ताकि आपका महान नाम को आदर मिले आज, कि हर एक खोए हुए को आपके राज्य में लाने के द्वारा, और भटकते हुए प्राण जो हमारे शब्द की आवाज के नीचे हों या ये टेप जब कभी पहुंचेगा उन मूर्ति पूजक राष्ट्रों में जहां तक कि ये समस्त संसार में जाते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज हमारे मध्य में कोई भी दुर्बल व्यक्ति नहीं होगा। जब सभा समाप्त होने पाए, प्रभु परमेश्वर हर खोए प्राण को बचा ले और हर बीमार देह को चंगा करे। अपने बालकों के हृदय को आनंद से भर दें। इसलिए क्यों हमें विश्वास है प्रभु की यीशु के नाम में मांगे अपने पिता परमेश्वर से, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा दी है कि वो सुनेगा और ये उसकी महिमा के लिए है। आमीन। संत यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 20वें पद से आरंभ करके मैं मूल पाठ के लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ ये सही है। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ, मैंने गलत जगह निकाला, मुझे एक मिनट के लिए क्षमा करें। यीशु प्रार्थना करता है, वो देख रहा हूँ, या यीशु नहीं प्रार्थना कर रहा है, बल्कि परंतु उसका मैंने अपने मूल पाठ पर कुछ गलत निशान लगा लिया होगा। ये जहाँ यीशु ने प्रार्थना की या वो कह रहा था कि जैसे स्त्री को अपने बालक के जन्म के समय पीड़ा होती है, जन्म बालक का जन्म, ये लूका या यूहन्ना, जैक ये किसमें है? यूहन्ना का 16वां। मैंने सोचा वो ठीक था, परंतु ये कुछ वैसा सा सुनने में नहीं लगा। 16वां अध्याय यूहन्ना का 21वां पद, निश्चय ही 21वां पद, निश्चय ही हम यहाँ पर हैं। यूहन्ना, संत यूहन्ना 16:21, ताकि वे संभव। भाई जैक, नहीं, ये अब भी गलत है। ये 20:16:21, मुझे यूहन्ना का 16वां अध्याय मिल गया, 21वां पद, परंतु ये क्या मैं गलत हूँ? भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, इस बाइबल में मिल गया। जी हाँ श्रीमान, उन्होंने ये गलत छापा है। जी हाँ, आप जानते हैं क्या, ये बिल्कुल सच है। यहाँ बिल्कुल नई बाइबल है, मुझे अभी हाल में ही मिली है, और ये गलत छपी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। 16:21, धन्यवाद, ये सही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वो बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। धन्यवाद मेरे भाई, निश्चय ही मैं इसकी सराहना करता हूँ। अब सही में ये यहाँ बाइबल में नहीं छपा, पृष्ठ गलत लगा, और मैंने इसे अपनी पुरानी स्कॉफील्ड बाइबल में पाया और इस वाली को साथ उठाकर यहाँ आ गया कुछ क्षणों पहले, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे ये बड़े दिन के उपहार में दी। अब इस दोपहर बाद एक विषय पर बोलना चाहता हूँ, जिसकी मैंने घोषणा की, प्रसव पीड़ा। ये सुनने में बुरा लगता है, परंतु ये बाइबल में है। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु यहाँ बोल रहा था, जैसा कि उसने कहा, तुम्हें दुख होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यहाँ अपने चेलों से बात कर रहा है, ये जानते हुए कि मसीहत का जन्म अस्तित्व में आ रहा है, और अब पुराने को मरना होगा ताकि नया वाला जन्म ले। कोई भी चीज जो जन्म देती है, उसे लें, उसे कष्ट के दर्द होने हैं, और वे निश्चय ही कष्ट के दर्दों और व्यथा से होकर निकलते हैं कि व्यवस्था से निकलकर अनुग्रह में आए। साधारण प्राकृतिक जन्म आत्मिक जन्म का प्रतीक है, प्राकृतिक की सारी चीजें आत्मिक की प्रतीक हैं। और हम पाते हैं यदि हम यहाँ इस आधार पर देखें और पेड़ को पृथ्वी पर देखें, बढ़ता है और जीवन के लिए संघर्ष करता है। ये दिखाने जा रहा है कि कहीं एक पेड़ है जो नहीं मरता, क्योंकि ये किसी चीज के लिए कर रहा है। हम पाते हैं कि लोग, कोई मतलब नहीं कितने बूढ़े, कितने बीमार, क्या दशा है, वे जीने के लिए कर रहे हैं कि जिए, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि कहीं जीवन है जहां हम जीते हैं, सदा के लिए जीते हैं। ध्यान दें कि कितना सिद्ध है। अब पहले यूहन्ना 5:7 में, मैं विश्वास करता हूँ यही है, यदि मैं गलती ना करूँ, इसने कहा तीन हैं जो स्वर्ग में गवाही रखते हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक हैं। पृथ्वी पर ये तीन गवाही देते हैं, ये जल, लहू और आत्मा, और ये एक बात पर सहमत हैं। अब ध्यान दें, पहले तीन एक हैं, दूसरे तीन पृथ्वी के हैं, जो कि एक ही में सहमत हैं। बिना पुत्र के पिता तुम्हारे पास नहीं हो सकता, बिना पवित्र आत्मा के आपके पास पुत्र नहीं हो सकता, परंतु बिना लहू के जल आपके पास हो सकता है, और लहू बिना पवित्र आत्मा के। मैं सोचता हूँ हमारे युगों में से होते हुए ये सिद्ध हो चुका है, जल, लहू, पवित्र आत्मा, न्यायोचित, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये प्रतीक या बनाते हैं या एक प्रतिछाया जो कि शारीरिक जन्म से लिया गया है। देखिए, जब एक स्त्री या कोई चीज जन्म देने को कष्ट में होती है, पहली चीज जो घटित होती है जल आता है, एक साधारण जन्म, दूसरी चीज लहू है, और फिर जीवन आता है, जल, लहू, आत्मा, और ये मिलकर साधारण प्राकृतिक जन्म बनाते हैं। और इसी प्रकार से प्राकृतिक क्षेत्र में है, ये जल है, विश्वास के द्वारा न्यायोचित ठहरना, परमेश्वर पर विश्वास करना, उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना और बपतिस्मा लेना। दूसरा आत्मा का पवित्रीकरण है कि परमेश्वर आत्मा को संसार की सारी वस्तुओं से शुद्ध करता है और संसार की इच्छाओं से, और फिर पवित्र आत्मा अंदर आता है और नया जन्म देता है और शुद्ध किए हुए पात्र को भरता है। उदाहरण के लिए इस प्रकार, अब वो मैंने आपको बताया, आप जिस पर विश्वास नहीं करते एक और कर दें, फिर उस खिचड़ी को ले लें। ध्यान दें, अब एक गिलास वहाँ मुर्गी के दड़बे में पड़ा है, आप उसे उठाकर और टेबल पर नहीं रख देते और उसे पानी या दूध से नहीं भर देते, नहीं, उसके उठा लिए जाने के द्वारा न्यायोचितता है, उसे साफ करना शुद्धिकरण है, क्योंकि यूनानी शब्द पवित्रीकरण है, एक संयुक्त शब्द जिसका अर्थ साफ करके उसे सेवा के लिए एक और रखना है, तब जब आप इसे भरते हैं ये सेवा में आ जाता है। अब इसके लिए क्षमा करें, आघात पहुंचाने के लिए नहीं, यही जहां आप पिलग्रिम होलीनेस वाले पेंटिकॉस्ट में जाने के लिए असफल रहे, आप पवित्रीकरण के द्वारा साफ किए गए, परंतु जब आपको सेवा में रखने के लिए तैयार किया गया अन्य भाषाओं के बोलने के वरदान के द्वारा और दूसरी चीजें, आपने इसे अस्वीकार कर दिया, उसे वापस बर्तन में डाल दिया, समझे। अब यही जो हुआ, ये सदा से यही करता है। अब आपकी आलोचना करने के लिए नहीं, परंतु मैं चाहता था कि अपने हृदय से इसे उतार दूं, और जब से मैं यहाँ हूँ ये मेरे हृदय में जल रहा है, इसलिए कि मैं ठीक हो सकूँ। बस यदि काल का अनुग्रह और दिमास और वे और आपके वो सब, मैं पूरी रीति से यत्न करूँगा कि अपने प्राण को इससे अलग कर लूँ। देखिए, ये फिर आप पर निर्भर करता है, एक साधारण आत्मिक का प्रतीक। अब हम फिर पाते हैं, और ये पूरी रीति से जन्मा है, जब बालक अक्सर, अब जब जल आता है आपको इसके लिए कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता, और जब लहू आता है आपको अधिक कुछ नहीं करना होता है, परंतु बालक में जीवन आने देने के लिए आपको उसे एक थप्पड़ लगाना ही होता है कि उसे चिल्लाएं, और यही एक, अब बिना शिक्षा के, जैसे कि यहाँ मेरे भाई लोग अच्छे प्रशिक्षित हैं, परंतु मुझे प्रकृति को प्रतीक के रूप में लेना होता है, और आप वही हैं, यही जो घटित हुआ, इसने एक वास्तविक चिल्लाहट ली कि इसे इन्हें दूं। अब आप एक छोटा सा एक प्रकार का झटका लें, हो सकता है कि मारने के लिए नहीं, परंतु थोड़ा सा झटका देने के लिए, उसके उसी विचार से कि कभी जन्म लिया ये चलेगा, उसे पकड़ा, हिलाया, वो सांस लेना आरंभ नहीं करता, उसे थोड़ा सा मारा, और फिर उसने अन्य भाषा में किलकारी मारी, अपने ही लिए, मैं ऐसा समझता हूँ। परंतु जो भी है वो शोर मचा रहा है, और मैं सोचता हूँ यदि बालक जन्मते ही मरा हुआ जन्मे, बिना किसी आवाज के, बिना भावुकता के, वो एक मरा हुआ बालक है। आज कलीसिया के साथ यही मामला है। वो तंत्र, हमारे पास बहुत सारे मरे हुए बालक हैं, ये ठीक बात है, उन्हें सुसमाचार की पिटाई की आवश्यकता है, आप देखिए, और ऐसे ही उन्हें जगाने के लिए, उन्हें अपने आपे में लाने के लिए, ताकि परमेश्वर उनमें जीवन का सांस फूंक सके। और अब हम ये पाते हैं कि ये इतना सत्य है, ये अशोधित धर्म विज्ञान है, परंतु जो भी है ये सत्य है। इसी प्रकार ध्यान दे, बीज के जन्म में पुराने बीज को मरना ही पड़ता है, इसके पहले कि नया वाला जन्म ले सके। इसलिए मरना किसी भी समय एक कठिन चीज है, इसलिए ये कष्टदायक, ये दुखदायी है। जन्म एक सा ही है, क्योंकि आप संसार में एक जीवन ला रहे हैं, और ये कष्टपूर्ण है। यीशु ने कहा कि उसका वचन एक बीज था, जिसे बोने वाला बोने चला। अब हम सब इस बात से परिचित हैं, और मैं इसे एक संडे स्कूल की पाठ की तरह सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये रविवार है। तब ध्यान दें, ये वचन बीज होने के कारण, परंतु स्मरण रखें कि बीज केवल एक नया जीवन लेकर आता है जब ये मरता है, और यही कारण था कि ये उन फरीसियों के लिए इतना कठिन था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को समझें, क्योंकि वे व्यवस्था के अधीन थे, और व्यवस्था परमेश्वर का वचन बीज के रूप में थी। परंतु जब वचन देह बना, और व्यवस्था नहीं परंतु अनुग्रह हो गया। अब अनुग्रह और व्यवस्था एक ही समय में साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अनुग्रह व्यवस्था के बहुत ही ऊपर है, व्यवस्था तो यहाँ तक कि दृश्य में भी नहीं है। और इसीलिए फरीसियों के लिए ये बहुत कठिन था कि अपनी व्यवस्था के लिए मर जाएं, ताकि वो अनुग्रह जन्म ले सके। परंतु इसे जाना ही है, दो नियम एक साथ एक समय में अस्तित्व में नहीं रह सकते। ऐसा नियम नहीं हो सकता जो ये कहे तुम संकेत पद्धति में भाग सकते हो, और दूसरा वाला कहता है तुम इससे भाग सकते हो। एक कहे तुम सकते हो तो दूसरा कहे तुम नहीं सकते। एक ही समय में एक ही नियम होना है। हो सकता है एक समय आप इसमें होकर निकले हो, चेतावनी संकेत इससे होकर निकलो, परंतु इस बार ये लाल बत्ती है, रुको, समझे? इसलिए दो नियम एक साथ एक समय में अस्तित्व में नहीं रह सकते। अब हम ध्यान देते हैं कि ये सदा मेरा विचार अब आपके लिए ये दर्द, दुख, बेचैनी को लेता है। देखिए कैसे वे फरीसी उस व्यवस्था के लिए मर गए, उस दर्द, दुख और परेशानी में से होते हुए, परंतु ये होना ही चाहिए। अब हम पाते हैं वो वर्षा जो पृथ्वी पर फल आदि उपजाती है, वो जन्मी, जैसा कि कवि ने कहा, गर्जन के उच्च क्षेत्र में, उस कर्कश दांतेदार उबड़ खाबड़ आकाश में। परंतु यदि ये गर्जन ना हो, और ये कर्कश उबड़ खाबड़ आकाश, छोटी परिष्कृत पानी की बूंद जो सागर पर से ऊपर उठाई गई, नमक से के सघन से होकर, तो ये जन्म नहीं लेगी। इसके लिए बिजली, गर्जन के धमाके, डरावनी चीजें जो मुलायम पंखड़ी पर पानी की बूंद लाता है, जन्म देने के लिए ये दुख को लेता ही है, ये मृत्यु को लेता है। और जैसे कि बादल मरता है, वर्षा उत्पन्न होती है, क्योंकि वर्षा बादल का भाग है। एक को थमना है ताकि दूसरा अस्तित्व में आ सके। अब और मेरे भाई लोग यहाँ उनमें से कुछ योग्य थे, वे आप लोगों को इन सारी बातों के नियम दे सकते थे, मैं नहीं सकता। आइए हम किसी और बात पर चलें, एक छोटे से प्रमाण के लिए। मैं सोचता हूँ कि एक छोटा सा फूल, उनके विषय में सबके अपने विचार हैं, परंतु मैं सोचता हूँ कि सबसे सुंदर फूल जो मैंने कभी देखा, वहाँ पीछे पूर्व में हमारे तालाब की कुमुदनी, देखिए किसी ने, ओ मेरे लिए इस जैसा कुछ नहीं। परंतु क्या आपने ध्यान दिया उस कुमुदनी के तालाब को कैसे होना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि जो यीशु ने कहा कुमुदनी पर विचार करो, कैसे वे परिश्रम और कातते, परंतु मैं फिर भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान ने अपने सारे वैभव में उनके समान कभी नहीं पहना। सुलेमान के वैभव में और उसके सारे वस्त्र बनावटी थे, परंतु कमुदनी अपनी सुंदरता में ये उसका जीवन उसे सुंदर बनाता है, न कि कुछ बनावटी लेप उस पर का रंग, जैसे कि हमारी स्त्रियां। मैं नहीं सोचता कि आपको ये सब हरा हरा लेना है, आप जानते हैं, और आंख संकेत दीप, आप जानते हैं इस प्रकार से, और वो सब नाखून के प्रसाधन या नहीं, मैं इन चीजों में गड़बड़ा गया। वो सब आपके चेहरे पर आपको सुंदर बनाता है, सुंदर ऐसे जैसे सुंदर होते हैं। यदि आप एक थोड़ा सा प्रेरित 2:4 इसमें मिला दें, थोड़ा यूहन्ना 3:16, ये सारे किसी उस मैक्स फैक्टर को पछाड़ देगा जो कभी करने का यत्न किया, समझे? आपका पति आपको अधिक प्रेम करेगा, हर कोई करेगा, मैं निश्चित हूँ, परमेश्वर करेगा। कमुदनी, उसने कहा, इस पर सोचो, ये कैसे बढ़ती है, परिश्रम ही इसको ऊपर उठाता है। ये तालाब की छोटी कुमुदनी देखिए, ये कहाँ से होकर आती है, धूल, कीचड़, गंदगी, गारा, गंदा पानी, वो इस सब के बीच से संघर्ष करती हुई ये जीवन का छोटा सा जीवांश स्वयं ही तालाब की तलहटी में कार्य करता है, जहाँ मेंढक और दूसरी चीजें होती हैं, और फिर स्वयं को इस सब में से ऊपर ले आ ऊपर को लाती है। परंतु जब ये सूर्य की उपस्थिति में आ जाती है, ये उत्पन्न होती है, ये छोटा बीज जीवन में खिलकर आता है। ये वो तब तक नहीं कर सकता जब तक ये सारी प्रक्रिया में से होकर नहीं निकलती, इसे वहीं से ही होकर आना है, यही इसको बनाता है, क्योंकि ये स्वयं सूर्य ही है जो इसे खींच रहा था। और जब ये उस गंदे पानी की सतह पर पूरी रीति से आ जाता है, गंदगी और आदि आदि से, तब ये इतना आनंदित होती है, ये अपना जीवन बाहर की ओर मुफ्त में देती है, और ये एक सुंदर जीवन है जब ये उसकी उपस्थिति में आती है जो इसे ऊपर खींच रहा था। मैं सोचता हूँ मसीही जीवन का एक सुंदर प्रतीक है, जब कुछ आपको संसार से बाहर खींच रहा है, जब तक कि आप एक दिन ठीक उसकी उपस्थिति में जन्म नहीं लेते पवित्र आत्मा के द्वारा, कितना सुंदर है। यदि आप इसकी सहायता करने का यत्न करते हैं तो आप इसे मार डालते हैं, एक छोटे चूजे के समान, जब ये जन्म ले ही रहा होता है। आप जानते हैं, यदि आपने कभी एक छोटे से के ऊपर ध्यान दिया है, ठीक उसकी छोटी चोंच के ऊपर, या कोई भी चिड़िया जो अंडे से जन्म लेती है, इसे होना ही है, ये उस अंडे के छिलके को पका रहा है, अंडे का पुराना अंदर के भाग को समाप्त हो जाना है, और इसको अपनी छोटी चोंच से आगे पीछे खुरचता है, जब तक कि वो छिलके को तोड़ नहीं देता। हम इसे पिपिंग, बाहर निकलना कहते हैं, वहाँ जहाँ केंटकी से मैं आया हूँ, बाहर आना। उन्होंने इससे अच्छा रास्ता कभी नहीं ढूंढा, समझे? क्यों? ये परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्ग है। आप उसकी सहायता करने की कोशिश करें, आप उसे मार डालेंगे, उसके छिलके को हटा दीजिए, वो मर जाएगा, समझे? उसे परिश्रम, जोर लगाना ही है कि तोड़ दे। एक मसीही को इसी प्रकार से करना है। ये ऐसा नहीं है कि कोई आपसे हाथ मिला रहा है, आपको अंदर ले रहा है, आपको वहाँ पड़े रहना है जब तक आप मर जाएं, गल जाएं, और परमेश्वर के राज्य में जन्म लें। ये परमेश्वर का दिया हुआ मार्ग है। आप पुस्तक के द्वारा या हाथ मिलाने के द्वारा सदस्य बनना, ऊपर उठो, झुक जाओ, आपको अपने पुराने कवच में से अलग होना है। ध्यान दें, उन्हें इससे अच्छा मार्ग नहीं जो कभी उनको मिला हो। बालक के लिए उन्हें इससे अच्छा मार्ग नहीं मिला जो कि वे चाहते हैं, इसके लिए सिवाय परमेश्वर का मार्ग। अब जब छोटा बालक जन्म लेता है, आप उसके झूले के पास एक छोटी सी घंटी लगा दें, कहें, मेरे छोटे लड़के, मैं एक धर्म विज्ञानी हूँ, मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं कि कैसे बच्चों को पालें, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम आधुनिक बालक हो, तुमने एक आधुनिक घर में जन्म लिया है, एक आधुनिक माता पिता के द्वारा। जब तुम भूखे हो या माँ की आवश्यकता या मेरी हो, बस इस छोटी घंटी को बजा देना, ये कभी काम नहीं करेगा। केवल एक ही विधि है कि उसे मिल सकता है जो वो चाहता है कि वो इसके लिए रोए, यही परमेश्वर का मार्ग है और यही विधि है कि हम जो चाहते हैं कि हमें मिले इसके लिए रोए, शर्माए ना, कहें मैं परमेश्वर के लिए भूखा हूँ। चिंता ना करें, चाहे डीकन पास्टर या जो कोई भी आसपास में हो, जो भी हो, रोएं। जोन्स यहाँ पर बैठा है, इससे क्या अंतर पड़ता है? रोएं। पाने का केवल एक यही तरीका है, जब तक आपको सहायता न मिले। उसने जब वो यहाँ पृथ्वी पर था सिखाया, आप उस अन्यायी न्याय के विषय में जानते हैं। एक छोटी ऊस की बूंद, मुझे इसके रचना सिद्धांत नहीं मालूम, हो सकता है कोई यहाँ पर विज्ञानी होगा। मैं जैसा सोचता हूँ कहने जा रहा हूँ, ये वातावरण का कुछ जो एक घनत्व में आता है अंधेरी रात में और ये पृथ्वी पर गिरता है, और जब ये होता है तो ये रात्रि में उत्पन्न होता है, परंतु सुबह में ये वहाँ ठंड में और ठिठरते हुए वहाँ घास की पत्ती पर पड़ा होता है या आपके कपड़ों की किनारी पर बूंदों में होता है। बस एक बार सूरज को चमकने दें, क्या आपने ध्यान दिया ये कितना आनंदित हो जाता है? ये बस चमकता और थरथराता है क्योंकि ये जानती है कि ये सूर्य का उजियाला उसे वापस खींचने जा रहा है जहां वो आरंभ में थी। और ऐसे ही हर पुरुष या स्त्री जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है उसमें कुछ है। जब उजियाला हम पर फैलता है तो हम आनंदित होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम वहीं वापस जा रहे हैं जहाँ से आप आए हैं, परमेश्वर की गोद में से। आनंद से चमक सकते हैं जब इस पर सूर्य चमकता है, निसंदेह ये जानते हुए कि वहीं जा रहे हैं जहां से आए हैं। छोटी कच्ची चीजें, परंतु हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। परंतु आइए हम कुछ और ढूंढें। हम जानते हैं पुराने बीज को होना ही है, इसके पहले कि नया बीज पुराने बीज से बाहर आ सके, इसे सड़ना ही है पूरी रीति से, केवल मरना नहीं परंतु मरने के बाद सड़ना। हम ये सत्य है, हम जानते हैं। नए जन्म में भी यही बात है, हम कभी वापस नहीं जाते परंतु हम आगे जाते हैं जब आप नया जन्म लेते हैं। और इसी कारण मैं सोचता हूं कि आज हमारे पास बहुत सारे नहीं है, बजाय वास्तविक नए जन्मों के, ये बीज कारण है। हो सकता है वचन के साथ सहानुभूति होगी या व्यक्ति, परंतु वे पुराने तंत्र से सड़कर अलग नहीं होना चाहते जिसमें कि वे थे, वे उसमें से बाहर नहीं आना चाहते। वे पुराने तंत्र में ही रहना चाहते हैं और नए जन्म का दावा करते हैं या युग के संदेश का। हम ये लूथर, वेस्ली, पेंटिकॉस्टल और सब दूसरे युगों में पाते हैं। वे अब भी पुराने तंत्र को ही पकड़े रहना चाहते हैं और इसका दावा करते हैं, परंतु पुराने तंत्र के युग को मरना सड़ना ही चाहिए ताकि नए वाले को लेकर आए। वे अब भी चिपके रहना चाहते हैं। ध्यान दें, वे जानते हैं पुराना तंत्र मर गया परंतु वे इससे सड़कर अलग नहीं होना चाहते। अब सड़ना वो है जब वास्तव में समाप्त हो गए, जब एक दावा किया जाता है कि उन्होंने नया जन्म पाया है, परंतु दावा केवल एक मात्र चिन्ह है। सड़कर समाप्त होना नए जन्म को लाता है, इससे सड़कर अलग होना जैसे हमने सारे युगों में होते हुए किया, वेस्ली और सबके द्वारा होते हुए। परंतु बात यह है, इसके बाद नया जन्म होता है, वेस्ली या लूथर एक वचन के साथ आए, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। भाई वो पुराने तंत्र के साथ अधिक नहीं टिका रह सकता, उसे तो इससे बाहर आना ही है। और तब जब कैल्विनिस्ट ने एंग्लिकन कलीसिया को लिया, ऐसी स्थिति में कैल्विनिस्ट की शिक्षा की अधीनता में, जब तक कि परमेश्वर ने आर्मेनियन शिक्षा को खड़ा ना किया जो कि जॉन वेस्ली था, पुराने तंत्र को मरना ही था ताकि नया वाला आए। और जब वेस्ली का युग थमा और सारे छोटे युग या वे पत्तियां जो डंठल से बाहर निकलकर आईं या वेस्ली युग में फुंदनी से, देखिए जब पेंटिकॉस्टल वरदानों की वापसी के साथ बाहर आए तो उन्हें बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पिलग्रिम होलीनेस, नाज़रीन, चर्च ऑफ क्राइस्ट जो ये वो कहलाते थे, इनसे बाहर आना ही था, उन्हें इससे बाहर निकलना ही था, इससे सड़कर अलग होना और नए जन्म को स्वीकार करना। आप सदा पागल कहे जाएंगे, परंतु ये जैसा कि पौलुस ने कहा जब वो उससे सड़कर अलग हो गया जिसका वो दावा करता था, कहा जिस मार्ग को वे कुपंथ कहते हैं उसी मार्ग में मैं अपने बाप दादाओं के परमेश्वर की आराधना करता हूँ, जिस मार्ग को वो कुपंथ कहते हैं। समझे, उसने नया जीवन स्वीकार कर लिया था, पुराने नियम ने नए को जन्म दिया और वो पुराने वाले से सड़कर अलग हो गया था और उसे एक छाया बनाया ताकि, और यही जहाँ अब हम लोग हैं। अब मुझको सहन करें, परंतु ये मेरा विचार है, कलीसियाएं इतनी अधिक व्यवस्थित हो गई हैं कि एक दूसरे वाले में तब तक नहीं जा सकते जब तक आप एक के सदस्य हैं। आपके पास संगति का पत्र होना ही है या किसी प्रकार का प्रमाण पत्र, और इस पर विश्वास करने के द्वारा केवल एक ही द्वार जो मेरे लिए लगभग खुला है, वे ये व्यापारी लोग, बिजनेसमैन, और जब तक ये लोग संस्थागत नहीं मैं उनके साथ चल सकता हूँ, संदेश को सामने ला सकता हूँ। ये मैं अपने हृदय पर लोगों के लिए अनुभव करता हूँ, परंतु ये इतना व्यवस्थित है और मैं आप पेंतिकॉस्तलों से प्रेम करता हूँ, और पेंतिकॉस्तल संस्था नहीं है, जो भी हो आप अपने आप को वो कहते हो पेंतिकॉस्तल, पेंतिकॉस्तल एक अनुभव है न कि एक नामधारी। परंतु देखिए, इसकी बात ऐसी है, बहुत से लोगों के लिए बहुत कठिन है जब वे इसे देखते हैं और इसका विश्वास करते हैं और देखते हैं कि ये परमेश्वर द्वारा वचन में प्रमाणित है, फिर भी ये बहुत कठिन है कि उन बातों से अलग हो जाएं जिन बातों में आप थे। मैं क्या करूँगा, कहाँ से मुझे खाना मिलेगा? क्या परमेश्वर आपका भोजन है? आपके लिए परमेश्वर वो चीज है जिसे आप पकड़े रहे हैं। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें और उसकी धार्मिकता की। मैं छोड़ दूंगा और इस पर निर्भर रहूंगा। आप जानते हैं मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। हमें परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताया गया है कि हमें नई पृथ्वी, नया आकाश और नया जन्म मिलने जा रहा है। यदि आप इसके लिए वचन चाहते हैं तो ये प्रकाशित वाक्य 21 आपके लिए इसका उल्लेख कर सकता हूँ। यहाँ इसे देख लें। यूहन्ना ने कहा, मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी बीत गए, ये चले गए। अब यदि हमारे पास नई पृथ्वी, पुरानी पृथ्वी और नई पृथ्वी एक समय में एक साथ नहीं रह सकते, या नया संसार और पुराना संसार एक समय में एक साथ नहीं हो सकते, एक समय में दो संसारिक तंत्र एक साथ नहीं हो सकते। अब नई पृथ्वी होने के लिए पुरानी वाली को मरना है। अब यदि पुरानी वाली को मरना है तो फिर से इसे जन्म की पीड़ाएं उठ रही हैं कि एक नई वाली हो। और फिर यदि डॉक्टर रोगी की जांच के लिए जाए जो जन्माने की पीड़ा में हो, डॉक्टर एक चीज करेगा जो कि मैं दो या तीन की उपस्थिति में बातें कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छे डॉक्टर यहाँ पर हैं, मसीही डॉक्टर लोग, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, रोगी को देखने के बाद पहली बात जो डॉक्टर करता है, दर्द उठने का समय, जच्चा के दर्द, ये पीड़ा के समयों को देखता है कि कितने अंतरताल से हैं, कितने समीप, और हर पीड़ा कितनी तीव्र उठती है, एक दूसरे से अधिक तेज होता है। अगला वाला अब भी तेज है, जल्दी जल्दी हो रहे हैं। इस प्रकार से वो रोगी का निदान करता है, जच्चा की पीड़ाएं। भाई, यदि नए संसार को जन्म देना है, आइए कुछ जच्चा पीड़ाओं को जो पृथ्वी को हुई जांच करें, और फिर हम देखेंगे कि हम लगभग किन दिनों में रह रहे हैं और अपनी पीड़ाओं में वो कहां तक निकल गई। पहला विश्व युद्ध उसकी महान पीड़ा को दर्शाता है, पहली पीड़ा उसकी उसे जन्माने की अवस्था में ले गई। इससे उस समय के कारण हमने बमों का निर्माण किया और मशीन गने और जहरीली गैस, और आपको स्मरण है, संभव है बहुत से नहीं सकते, मैं एक छोटा लड़का था लगभग 8 साल का, परंतु मुझे याद है कि वे सल्फर और क्लोरीन गैस की बातें किया करते थे और आदि आदि। ये कैसे दिखाई पड़ता है, ये बस आरंभ हुआ था और उन्होंने कहा ये सारी पृथ्वी को जला देगा, ये सब को मार डालेगा। भाई, हो सकता है ये आरंभ ही हो, हवा इसे सारे संसार में होकर निकाले, और कैसे हर एक जहरी गैस के हथियार से भयभीत था, पृथ्वी पर वो बीता, ये उसकी पहली जच्चा वाली पीड़ा थी। और हम पाते हैं कि हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उसकी पीड़ा अधिक थी, ये सारे समय अधिक भयानक था, पृथ्वी की जच्चा पीड़ा। एटम बम के समय ये लगभग खत्म सी हो गई थी, क्योंकि सारे शहर को नष्ट कर देगी। इसकी ये पीड़ा पहले विश्व युद्ध से अधिक थी, पृथ्वी का नाश। अब वो जानती है कि उसके छुटकारे का समय निकट है। यही कारण है कि वो बहुत अधीर है, व्यथा में जैसे कि ये हैं, जिसका कारण हाइड्रोजन बम और मिसाइल हवा वाली जो कि सारे संसार को नष्ट कर सकती है। एक राष्ट्र से दूसरा डरा हुआ है, कोई मतलब नहीं कितना छोटा है। उसके पास वे मिसाइल हैं जिनका वे दावा करते हैं, उनमें से एक वे उनका दिशा निर्देशन सितारों के द्वारा कर सकते हैं और उसे संसार में कहीं भी गिरा सकते हैं जहां वे चाहें। रूस, जैसा कि मैंने उस दिन समाचार में सुना, उसने दावा किया है कि वो इस राष्ट्र को नष्ट कर सकता है और अपने राष्ट्र को टूटने से बचाए रख सकता है। हम नहीं जानते कि इस विषय में क्या करें। हर कोई इन दावों को कर रहा है और ये ऐसा ही है। लोगों का विज्ञान परमेश्वर की महान प्रयोगशाला में घुस गया, जब तक कि वे अपने आप ही को नष्ट ना कर रहे हैं। परमेश्वर होने देता है कि बुद्धि सदा अपने आप को नष्ट कर ले। परमेश्वर किसी चीज को नष्ट नहीं करता, मनुष्य स्वयं को बुद्धि के द्वारा नष्ट करता है, जैसा उसने आरंभ में किया। शैतान की बुद्धि को लिया बजाय परमेश्वर के वचन के। अब वे जानते हैं इसे छोड़ देना चाहिए, वो इसे स्थिर नहीं रख सकते। रूस, मैं विश्वास करता हूं कि आज वो इसे नष्ट कर देगा, यदि वो ये सोचे कि वो इसे नष्ट कर सकता है और फिर स्वयं को बचाए रखे। कोई भी वे छोटे राष्ट्र इसे कर सकते हैं, परंतु वे डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये संसार अपनी ग्रह पथ में स्थिर नहीं रह सकेगी ऐसी स्थितियों में। इसलिए संसार जानता है कि उसकी जच्चा पीड़ा इतनी महान है, इसे तो होने ही देना है। एक नया जन्म होने जा रहा है, जन्म समीप है। मैं इसके लिए धन्यवादित हूँ, इस वाली से मैं थक चुका हूँ। कोई ये जानता है कि मृत्यु दुख का स्थान है और सब प्रकार की विसंगतियाँ और आदि आदि, और मैं आनंदित हूँ वो सब हटा दिया गया है। मैं आनंदित हूँ कि समय निकट है, जैसे पूर्वज यूहन्ना ने कहा, प्रभु यीशु जल दिया। निसंदेह उसे अब सड़ जाना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा, नया जन्म लाने के लिए। देखिए वो किस चीज में सड़ गया, ध्यान दे मेरे भाई, वो बिल्कुल सड़ गई। उसकी राजनीति और तंत्र पूरी की पूरी सड़ गई, जितनी सड़ सकती थी। उसमें कोई भी अच्छी हड्डी नहीं है उसके संसारिक तंत्र में। उसकी राजनीति, धार्मिक राजनीति, ये जो भी है, एक कहता है मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं एक रिपब्लिकन हूँ, मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, क्यों? हर चीज भीतर तक सड़ चुकी है। कुछ ऐसा है जिसे छोड़ना है, वो खड़ी नहीं रह सकती। यदि आप जॉर्ज वॉशिंगटन या अब्राहम को संयुक्त राज्य के हर प्रदेश में रखें, ये फिर भी वापस नहीं आ सकेगा। ये छुटकारे से बाहर है। केवल एक ही चीज है जो इसकी सहायता कर सकती है, वो सृष्टिकर्ता का आगमन है। आमीन। वो जानती है उसे ये छोड़ना है, वो दर्द और व्यथा में है, वो नहीं जानते कि क्या करना है। एक इस ओर देख रहा है और दूसरा दूसरी ओर, और हर चीज एक दूसरे से डरा हुआ है। एक कुछ करने के यत्न में है कि इसे इस वाले को नष्ट कर देगा, ये वाला उससे विरोध के यत्न में है दूसरे को नष्ट करें। अब तक वे पापी मनुष्यों के हाथ में नहीं पड़े जो इस सारे संसार को 5 मिनट में नष्ट कर सकते हैं, समझे? इसलिए ये जानती है कि वो स्थिर नहीं रह सकती। लोग जानते हैं वो स्थिर नहीं रह सकती, और संसार जानता है कि वे होने जा रहे हैं, ये घटित होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये था, सारा आकाश और पृथ्वी में आग लगने जा रही थी है। ये समस्त चीजों का जीर्णोद्धार होने जा रहा है ताकि नया संसार जन्म ले सके। परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की है। वो अपने सारे तंत्र में सड़ी हुई है, उसे ये करना ही है कि सड़ जाए। इसी कारण वो, मैंने कहा, वो इतनी अधीर है और चेहरा लाल है और घबराई हुई है, और हर कहीं भूकंप और ऊपर नीचे किनारे पर, और अलास्का में ज्वार भाटे की लहरें और किनारे को ऊपर नीचे हिला रही है, भूकंप और आदि आदि, और लोग लिख रहे हैं क्या हम इसे छोड़ देंगे, क्या हम इसे छोड़ देंगे, समझे? वे नहीं जानते कि क्या करें। बचने का कोई स्थान नहीं है सिवाय एक के, वो मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। वहाँ केवल एक ही चीज है जो बचने का स्थान है, और वो है, सारे जो बाहर हैं नष्ट हो जाएंगे उतने ही निश्चित जैसे परमेश्वर ने कहा। अब आइए डॉक्टर की किताब को देखें। यदि वो इस प्रकार की स्थिति में है और देखते हैं, यदि वो घटित होना है जब एक नई पृथ्वी जन्म लेती है, मत्ती 24 डॉक्टर की पुस्तक में जो कि बाइबल है। अब आइए देखें कि क्या भविष्यवाणी की गई है और उसके लक्षण क्या होंगे। अब यदि डॉक्टर बालक के जन्म के लक्षण जानता है और लगभग वो समय जब बालक को आना है, वो हर चीज को तैयार रखता है क्योंकि वो बालक के जन्म लेने के समय को जानता है, क्योंकि सारे लक्षण दर्शाते हैं पानी आ गया है, लहू, और अब ये समय है कि बालक आए, ये बालक के जन्म लेने का समय है, और इसलिए हर चीज को इसके लिए तैयार रखता है। अब यीशु ने हमें बताया है कि बिल्कुल ठीक कि क्या घटित होगा इस समय में। उसने हमें मत्ती 24 में बताया कि कलीसियाएं सच्ची कलीसिया और दूसरी कलीसियाएं होंगे, स्वाभाविक कलीसिया आत्मिक कलीसिया, इतने समीप होंगे नकल मारने वाले जब तक कि ये चुने हुओं को धोखा न दे दें, यदि ये संभव था तो। नूह के दिनों में ये कैसे हुआ था, कैसे वे लोग खा और पी रहे थे, विवाह और विवाह में लेन देन और संसार की ये सब आचरणहीनता जो आज हम देखते हैं। बाइबल वो पुस्तक, डॉक्टर की पुस्तक ने ये कहा कि ये होगा, इसलिए जब हम इसे होते हुए देखते हैं, हम जानते हैं कि जन्म समीप है, इसे होना ही है। जी हां श्रीमान। अब हम इस पर ध्यान करते हैं, एक राष्ट्र के समान, एक राष्ट्र नहीं परंतु संसार। अब इसराइल एक कलीसिया, आइए कुछ मिनटों के लिए पीछे से आरंभ करें और 10 मिनट के लिए इस पर ध्यान करें, संभव है। इसराइल को हर भविष्यद्वक्ता की अधीनता में जच्चा की पीड़ाएं हुई, जो इस पृथ्वी पर आए उसके संदेश पर उसे जच्चा की पीड़ाएं उठी। ये किस लिए होता है, भविष्यद्वक्ता के पास वचन था और उसने इतनी सड़ाहट को बोया और इतने योजनाबद्ध क्रम उसमें है, जब तक कि इस भविष्यद्वक्ता ने उसकी जड़ से उसे भटका झटक नहीं दिया, वे सब के द्वारा वे घृणित ठहरे। इसलिए जब परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता भेजे तो स्वयं कलीसिया जन्म देने की पीड़ा में चली गई, क्योंकि भविष्यद्वक्ता प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है और केवल उसी के पास। वो वचन जो उस दिन के लिए बोला गया उस युग के भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रकट हुआ, सदा से ये रहा है। और कलीसियाओं ने अपने चारों ओर इतने सारे वाद बना लिए हैं, जब तक कि उसने उनके झूले में से झटक कर गिरा नहीं दिया। जब वो आता है उसे जन्म की पीड़ाएं थीं। ये क्या था, वापस वचन पर, वापस जीवन पर। तंत्र में जीवन नहीं होता, ये तो केवल परमेश्वर का वचन है जिसमें जीवन है। तंत्र या तरीका तो उसके चारों ओर बनता है जिसमें कि जीवन नहीं होता, ये तो वचन है जो कि जीवन देता है। उसका संदेश बचे हुओं के को वचन रूपी चट्टान पर वापस लेकर आता है। एक छोटा झुंड बाहर आकर और विश्वास करता है, कभी कभी संभव है नूह के समय में लगभग 8 ही लोग, परंतु जो भी है परमेश्वर ने बचे हुओं को आश्रय दिया और उन सबको नष्ट कर दिया जो आश्रय से बाहर निकल गए। इसने सारे युगों से होते हुए ये किया और अंततः जब तक कलीसिया ने उन्हें एक मनुष्य का बालक और वो मनुष्य बालक वचन था न दे दिया, स्वयं ही देहधारी हो गया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ, हमारे मध्य में वास किया। उसने हर शैतान हर सामर्थ को जो पृथ्वी पर उसके विरोध में उठी जीत लिया, केवल पिता के वचन से। हर परीक्षा को जो शैतान ने उसे दी उसने शैतान को डांट लगाई, अपनी सामर्थ से नहीं जो उसके पास थी, परंतु परमेश्वर के वचन से। ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, क्योंकि वो वचन था। जब शैतान हवा के विरुद्ध आया वो वचन नहीं थी, इसलिए वो असफल हो गई। जब वो मूसा के विरुद्ध आया उसने वही चीज की, परंतु जब उसने परमेश्वर के पुत्र पर प्रहार किया वो 10,000 वोल्ट था, इसने इसके सारे पंख ढीले कर दिए। जब उसने वापस आकर कहा ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा परंतु हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वहाँ मनुष्य बालक देहधारी हुआ, परमेश्वर का अनंत वचन स्वयं ही मांस की देह में यहाँ पृथ्वी पर प्रकट हुआ कि वचन का प्रतिनिधित्व करे। इसलिए वो जान गया था कि उनके हृदयों में क्या है। इसी प्रकार से वो फिलिपस को बता सका कि वो कहाँ पर था, वो शमौन पतरस को बता सकता था कि वो कौन था, कुएं पर स्त्री को बताया, क्यों, वो वचन था। ठीक है, बाइबल ने इब्रानियों के 4 अध्याय में कहा परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है, गांठ और गुदे को वार पार छेदता है, हृदय के विचारों और भावनाओं को पहचान लेता है। क्यों वे अंधे फरीसी इसे देख सके, ये प्रकट किया हुआ वचन है, क्योंकि वे याजक पद और तंत्र में लिपटे हुए थे और पुराने तंत्र को हटना ही था। ये वचन था, परंतु जिस बात की प्रतिज्ञा की गई थी वही पूरा हुआ। इसे तो हटना ही था, ये गूदा था, बीज आगे बढ़ गया। मूसा नूह का संदेश नहीं ला सका, ना ही यीशु नूह का संदेश ला सके, क्योंकि ये दूसरा युग था और पुराना बीज ठीक था। इसने अपना उद्देश्य पूरा किया और मर गया, चला गया, पुराने से नए का रूपांतरण। वहाँ जीवन था, यही जो लोगों की चिंता थी, यही जिसकी उन्हें अभी आज भी चिंता है। हम दीवार नहीं बना रहे हैं, जैसा कि हमने लूथर के संदेश से आरंभ किया, सीधे सीधे उसी लीक पर चलते, या एक पेंटिकॉस्टल संदेश, ठीक। हम एक मोड़ मुड़ रहे हैं, हम एक भवन बना रहे हैं। परमेश्वर का वचन खाका है, कोई भी सीधी रेखा में दौड़ सकता है, परंतु कोना मोड़ने के लिए राजमिस्त्री होता है। इसे करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए होती है, इसके लिए स्वर्ग से अभिषेक चाहिए कि ये करने के लिए नीचे भेजा जाए। ये हर युग में हुआ और भविष्यवक्ताओं के युग में प्रभु का वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा आया और उन्होंने वे कोने मोड़ दिए, वे भिन्नताएं बनाई, परंतु बनाने वाला एक दीवार बनाना चाहता था। ये दीवार नहीं है, ये एक भवन है, परमेश्वर का भवन। अब हम अनुभव करते और ये जानते हैं कि ये सत्य है, ये तंत्र हर युग में सड़कर समाप्त हो गया और उस तंत्र का हर व्यक्ति को समाप्त होकर मरना था, जब तक कि वो उस कलीसिया को न ले आए। उस सड़ाहट में से स्वयं वचन निकल कर आया, प्रभु का वचन भविष्यवक्ताओं के पास आया, याजकों के पास कभी नहीं आया, ये भविष्यवक्ताओं के पास आया। और ध्यान दें, और जब ये हुआ तो अंततः वो वचन कुल मिलाकर यहाँ मनुष्य की देह में जन्मा, परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता ने उसमें सदैव वास किया, वो वचन था। भविष्यवक्ता वचन का भाग है, उसके युग का वचन। आज हम वचन का भाग हैं, जो वचन का अनुकरण करते हैं, परंतु वो वचन की सारी परिपूर्णता था, वो वचन था। जब वे उस पर दोष लगा रहे थे कि अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, उन्होंने उससे कहा, अच्छा तू अपने आप को परमेश्वर बनाता है? उसने कहा, क्या तुम्हारी व्यवस्था में ये नहीं लिखा कि जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तुमने उन्हें ईश्वर कहा? भविष्यवक्ताओं को, और वे थे, तो तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो जब मैं कहता हूँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? जहाँ परमेश्वर की परिपूर्णता ने परमेश्वर के पुत्र में सदैव वास किया, वो परमेश्वर का पूर्ण प्रगटीकरण था। यही जो अंततः उन भविष्यवक्ताओं की अधीनता में प्रसव पीड़ाएं, क्यों? उनके वचन होने के कारण उन्होंने अपने में होकर उस परिपूर्णता की संकेत किया कि वचन की परिपूर्णता। और फिर अंत में तंत्र मरकर समाप्त हो गया, जब तक कि वचन देदारी होकर हमारे मध्य में न रहा था। ध्यान दें, ये कैसे याकूब में चित्रित किया गया था, ध्यान दें, ये कैसे यूसुफ में चित्रित किया गया था, बिल्कुल ठीक अपने पिता का प्रिय, अपने भाइयों के द्वारा देश बिना कारण के। वो आत्मिक था, बातों को पहले से बता सकता था और सपनों का अनुवाद, वो ऐसा होने में कुछ भी नहीं कर सकता था, वो ऐसा ही जन्मा था, वो ऐसा होने के लिए ठहराया गया था, परंतु वो अपने भाइयों के द्वारा नापसंद किया गया और अंत में उसे चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया, लगभग 30 टुकड़े। और बड़ा हुआ और फिरौन के दाहिने हाथ बैठा, उसे उसकी कैद में देखा, वहाँ एक पिलाने हारा और पकाने वाला, एक नष्ट हो गया और एक बचा लिया गया था। यीशु क्रूस पर अपनी कैद में एक नष्ट हो गया था और एक बच गया था, बिल्कुल सही। और आसमानों तक उठाया गया और परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ गया, और जब वो फिर छोड़ेगा तो एक आवाज आगे आगे जाएगी, घुटने झुकाओ और जीव स्वीकार करे। और जब यूसुफ सिंहासन छोड़ता और आगे बढ़ता, एक तुरही फूंकी जाती और हर घुटने को झुकना पड़ता, यूसुफ आ रहा है। इसलिए किसी दिन परमेश्वर की महान तुरही फूंकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं जी उठेंगे और हर घुटना झुकेगा और हर जीव इस वचन को स्वीकार करेगी। परंतु वो किस लिए आ रहा है, वो यहाँ किसके लिए आ रहा है? ध्यान दें, ये पूरे वचन को लेकर आई है, जो कि देहधारी हुई उस प्रसव पीड़ा में, जो भविष्यवक्ताओं से था, चिल्ला उठे, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। अब परंतु वो 400 वर्षों से बिना भविष्यवक्ता के थी, इतिहास के और वचन के अनुसार मलाकी से यहुन्ना तक उनके पास केवल धर्मज्ञानी, याजक, पास्टर थे। अब यहाँ हम कल्पना कर सकते हैं कि बिना इसके वे अपने तंत्र में कितनी सड़ाहट की दशा में 400 वर्षों से रहे होंगे। एक सीधा सीधा संदेश यहोवा यू कहता है वाला परमेश्वर की ओर से। इसलिए याजक, भविष्यवक्ता और आदि आदि को कितनी भयानकता में चले गए, वो सड़ गई थी। तब यहुन्ना मलाकी तीन का प्रतिज्ञा किया गया एलिया, न कि मलाकी चार का, मलाकी तीन, क्योंकि यीशु ने कहा यही बात मत्ती 11वें अध्याय में, जब यहुन्ना उकाब की आंख पर पड़ चढ़ी, जैसा कि मैं विश्वास करता हूँ पेम्बर्स की ईगल एज बताती है, और उसने कहा जाओ उससे जाकर पूछो वो वही है या हम किसी और की राह देखें, समझे। और उसने कहा, यीशु ने जब उसके चेलों को जब वापस भेजा ये कहने के बाद, सभा में रुको और देखो क्या होता है, और जाकर यहुन्ना को सारी बातें बताओ, और धन्य है वो जो ठोकर ना खाए। उसने घूमकर चेलों को और लोगों को देखा जिनसे वो बोल रहा था, उसने कहा तुम वहाँ क्या देखने गए थे जब तुम यहुन्ना को देखने गए? उसने कहा क्या तुम कोमल वस्त्र पहने व्यक्ति को देखने गए थे? और उसने कहा मैं तुमसे कहता हूँ इस प्रकार के लोग राजा के महलों में रहते हैं। उसने कहा क्या तुम हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे? दूसरे शब्दों में हर छोटी चीज जो साथ साथ आई वो उसके द्वारा हिल गया। मैं तुम्हें बताऊंगा यदि तुम आकर हमारे झुंड के सदस्य बन जाओ हम तुम्हें अच्छा वेतन दे सकते हैं, यहुन्ना को नहीं। यदि तुम इसके विरोध में ना प्रचार करो और ये वो अच्छा तो तुम हमारे झुंड में सदस्य हो सकते हो, यहुन्ना नहीं। कहा तो फिर तुम क्या देखने गए थे? एक भविष्यवक्ता को? और मैं तुमसे कहता हूँ भविष्यवक्ता से बड़े को, यदि तुम इसे ग्रहण कर सको ये वो है जिसके विषय में भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया, कहा मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजता हूँ कि मार्ग को तैयार करे। ये मलाकी 3:1 है, मलाकी 4 नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अलग है, क्योंकि वो एलिया आता है तो तुरंत ही संसार को जल जाना है और धर्मी जन दुष्टों की राह पर चलेंगे। अब ध्यान दें, उसका संदेश उनके पुरोहितवाद की नींद से उन्हें कभी अधिक नहीं झकझोर सका। उन्होंने बस ये कहा वहाँ एक सनकी व्यक्ति है, उसके पास से जल्दी ही निकल जाओ। उसे सनकी कहा, वो वहाँ लोगों को पानी में डुबाने का यत्न कर रहा है, समझे। क्यों उस पुराने मनुष्य से क्या लेना? क्यों उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है? वो अपने पर भेड़ की खाल लपेटे है, वो इतना निर्धन है जैसे अय्यूब की पीरू। क्यों वो किस धर्म विद्यालय से आया है? कौन सा संगति का पत्र है? हम उसकी सभाओं में सहयोग नहीं करेंगे, हम उसे वहीं टिके रहने देंगे और भूखा मरने दें, समझे। संसार अधिक नहीं बदला, न ही तंत्र, परंतु हम उसे वहीं पड़ा रहने देंगे। उसके पास कोई, आप जानते हैं क्यों वो नहीं, स्मरण रखें, उसका पिता एक याजक था, परंतु क्यों वो अपने पिता की लीक पर नहीं चला? उन दिनों में बालकों के लिए यही रीत थी, क्योंकि उसके पास कुछ था, महान संदेश, उसे मसीह का परिचय कराना था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा था। वो छोटा झुंड जब्राइल के संदेश के द्वारा वापस यहाँ लाया गया ये जानते हुए कि ये ऐसा होगा, इसलिए हमें बताया गया लगभग 9 वर्ष की आयु में वो जंगल में चला गया। उसके माता पिता के मरने के बाद वो जंगल में चला गया, क्योंकि उसे ठीक ठीक सुनना था, क्योंकि वहाँ एक बड़ा भवन, महान धर्म विज्ञान का, उन्होंने कहा होगा अब मैं जानता हूँ कि मसीह की उद्घोषणा आप ही के द्वारा होनी है, यशायाह ने कहा है कि आप आ रहे थे, इसलिए आप ही वो आवाज हैं। अब क्या आप नहीं सोचते कि भाई जोन्स यहाँ पर ठीक उससे मिलते हुए हैं और वो सरलता से राजी हो जाएंगे? परंतु उसने उनकी रीतियाँ कभी नहीं सीखी। उसका संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो टिकने के लिए बाहर जंगल में गया। ध्यान दें, उसका संदेश एक धर्म ज्ञानी जैसा नहीं था। उसने प्रतीकों का प्रयोग किया, उसने कहा तुम सर्प की संतान, उन क्लर्जी मैन को सांपों कहा। ये एक खराब चीज उसने जंगल में पाई, एक चालाक चीज सांप थी, और उसने सोचा तुलना के लिए मैं ये एक सबसे अच्छी चीज जानता हूँ। उसने कहा तुम करेत की संतानों, आने वाले क्रोध से तुम्हें किसने चेताया? ये कहना ना आरंभ करो कि हम इससे उससे संबंधित हैं। परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। ये पत्थर उसने जो खाड़ी के किनारे देखे, कुल्हाड़ी भी जो उसने जंगल में प्रयोग करी, पेड़ों की जड़ पर रखी, यही जो उसने जंगल में देखा। हर पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता वो जानता था कि कहाँ से आग जलाने के लिए लकड़ी मिलती है। ये काटी गई और आग में झोंकी गई, इसमें से जलाने के लिए लकड़ी मिली, समझे। उसका संदेश क्लर्जी मैन का सा नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये जंगल की प्रकृति के अनुसार था, परंतु घोषणा के लिए उसके पास एक संदेश था। उसका विश्वास उसके संदेश में था, कहने को कि मसीहा आने वाला है और तब तक वो तुम्हारे मध्य में है। मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे बीच में एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, जिसके जूतों के भी मैं योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना वो कौन है? मैं नहीं जानता, परंतु एक दिन एक युवक चलता हुआ नीचे आया नदी में, साधारण सा दिखने वाला मनुष्य, बस पुराना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वहाँ खड़ा था, वो पुराना धन्य भविष्यद्वक्ता था, और उसने यर्दन के पार देखा, उसने कहा देखो वो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को उठा लिए जाता है। यूहन्ना तुम उसे कैसे जानते हो? वो जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को कहा जंगल में है, कहा जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे वही होगा जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसका संदेश धर्म विज्ञान के आधार से नहीं सकेगा या किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ मत्सार तंत्र, इसे तो सीधा सीधा परमेश्वर से आना है, क्योंकि उसके संदेश ने उन्हें बहुत नहीं हिलाया। उन्होंने सोचा ओ उसने ये कहा, उसने वो देखा, मुझे इसमें बहुत संदेह है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मैंने देखा ओ प्रभु मैं इस विषय में कुछ नहीं देख सका। याजक और उन्होंने कहा परंतु उसने ये देखा, और अब हम जानते हैं कि उसने ये देखा, निश्चय ही उसने देखा। परंतु आप ध्यान दें ये क्या मिला, ये उन्हें उनकी नींद से कभी नहीं जगा पाया, वे आगे बढ़ते रहे और उसका सिर काट दिया वैसे ही, परंतु इसने उन्हें कभी भी झकझोरा नहीं, परंतु इसने बचे हुओं को ले लिया, वे जिनके अंदर जीवन था, वो छोटा झुंड अन्ना और शिमोन और उनमें से थोड़े जो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, और अन्ना मंदिर में अंधी एक भविष्यद्वक्तनी जिसने प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु की सेवा की, और फिर एक दिन जब वो आत्मा में थी और शिमोन ने भविष्यवाणी करके कहा एक बूढ़ा मनुष्य, उसने कहा पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि जब तक मैं प्रभु के मसीह को नहीं देख लूंगा मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा। क्यों? कुछ याजकों ने कहा आप जानते हैं बेचारा बूढ़ा ये थोड़ा सा बह गया है, आप जानते हैं क्यों, अब उसका एक पांव कब्र में है और दूसरा फिसल रहा है, क्यों उसे उसके हाल पर छोड़ दो, वो एक सम्मानित बूढ़ा मनुष्य रहा है, परंतु वो एक प्रकार का, परंतु आप देखिए उसके पास क्या था, पवित्र आत्मा के द्वारा ये उस पर प्रकट किया गया था, वही बातें जो आप लोगों पर प्रकट की गई हैं। इस दोपहर बाद पवित्र आत्मा आपको किसी कारण से यहाँ लाया है, कुछ पवित्र आत्मा इन याजकों और क्लर्जी मैनों को देखो, यहाँ मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट कैथोलिक और सारे वे पवित्र आत्मा द्वारा चलाए गए समय यहाँ है, इसलिए पवित्र आत्मा उन पर मंडराया, वे एक भूख में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब एक दिन, अब जानते हैं कि टेलीविजन नहीं थे उस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद, इस प्रकार वे वहाँ यहूदिया की पहाड़ियों में थे, वहाँ एक बालक जन्मा, एक सितारा प्रकट हुआ और आदि आदि, परंतु 8 दिन के बाद माँ उस छोटे बालक को जानवर वाले कपड़े में लपेटकर, ये जानवरों वाला कपड़ा था, मुझे बताया यही था, उसके पास उसके ऊपर डालने के लिए कुछ भी नहीं था, ये एक छोटा सा चिथड़ा बैल के जुए पर से उतरा हुआ था, मुझे बताया गया कि वो जानवरों के ढांपने का कपड़ा था, और यहाँ यूसुफ और वे आते हैं इस छोटे से बालक के साथ, मैं कल्पना करता हूँ वो माँ उनसे जिनके बिनाई कढ़ाई के कपड़े थे उनसे दूर खड़ी थी, कहा वहाँ देखो, देखा वो रही, वो समझे, वो उस मनुष्य से गर्भवती थी, ये यहाँ आई है, इससे दूर रहो, फासला रखो, वे अभी वही सोचते हैं। परंतु मरियम बालक को हाथों में लिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ा कि उन्होंने क्या सोचा, उसे मालूम था कि वो किसका पुत्र है। और इसी प्रकार से हर विश्वासी जो परमेश्वर के वचन को अपने हाथ हृदय में स्वीकार करता है, मैं चिंता नहीं करता कि तंत्र क्या कहता है, आप जानते हैं कि ये क्या है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये आप पर पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किया गया है, जब आपके ऊपर उसकी सामर्थ की छाया पड़ी, आप जानते हैं ये कहाँ पर है, किसी मनुष्य को अधिकार नहीं कि वो सुसमाचार प्रचार करे जब तक कि वो पीछे रेगिस्तान में जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से न मिल ले, जहाँ संसार का पुरोहितवाद तंत्र इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, ये आपसे दूर है, आप वहाँ पर थे, ये आपके साथ घटित हुआ, मैं चिंता नहीं करता तंत्र क्या कहता है, आप इसके गवाह हैं, हालेलुया। मुझे वैसा ही अनुभव होता है कि बूढ़ा काला मनुष्य इस बारे में बातें कर रहा था कि अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, समझे, इस समय मुझे बहुत ही धार्मिक अनुभूति हो रही है जब मैं सोचता हूँ, और ये ठीक बात है, परमेश्वर स्वयं ने आप पर प्रकट किया है। शिमोन के पास प्रतिज्ञा थी, वहाँ प्रातः अपने अध्ययन में बैठा था, मैं समझता हूँ वहाँ सैकड़ों बालक अंदर लाए गए होंगे हर प्रातः, लगभग 25 लाख यहूदी वहाँ राष्ट्र में थे, और ये बालक आए और बहुतों ने जन्म लिया, हर एक 8 दिन के बाद माँ को आना था शुद्धिकरण के लिए चढ़ावा चढ़ाना, और यहाँ ये आते हैं, शिमोन वहाँ बैठा हुआ है, आप जानते हैं हो सकता है कि यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा है, मैं नहीं जानता, परंतु एकदम से, अब यदि पवित्र आत्मा ने आपसे प्रतिज्ञा की है, पवित्र आत्मा को उस प्रतिज्ञा को बनाए रखना है, यदि वो वास्तव में परमेश्वर है, यदि वो है, यदि एक मनुष्य आकर कोई निश्चित बात कहता है, परमेश्वर उसका समर्थन नहीं करता, तो फिर ये आरंभ से ही पवित्र वचन नहीं है, इसे भूल जाएं। और यदि वो ऐसा कहता है और फिर भी परमेश्वर इसका समर्थन नहीं करता, तो ये अब भी गलत है, क्योंकि परमेश्वर अपने संदेश का अनुवाद करता है, वो स्वयं अपना अनुवादक है, जो वो कहता है घटित होता है। तब परमेश्वर ने कहा, इसकी सुनो, क्योंकि यही सत्य है, केवल यही साधारण समझ है। यदि वो ये कहता है और ये घटित होता है और ये होता है, ये बताता है, इसे हर बार होना चाहिए, बिल्कुल सत्य, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। इस प्रकार शमौन वहाँ पर बैठा था, परेशानी झेल रहा था, वो बचा हुआ था, उसने यहूना को सुना था, उस समय का छोटा सा झुंड, और वो वहाँ बैठा था, पुस्तक में से सुन रहा था, जान रहा था, मेरा मतलब जान रहा था कि यहूना आ रहा था, क्योंकि वो बचा हुआ अल्पसंख्यक था, वचन उस पर प्रकट हुआ था। और एकदम से जब वो बालक मंदिर में आया, तो पवित्र आत्मा का ये कर्तव्य था कि प्रकट करे कि वो वहाँ था, इसलिए वो पवित्र आत्मा से प्रेरित हुआ और अपने छोटे से अध्ययन कक्ष से बाहर निकला, उस बड़े हॉल में होकर निकला, स्त्रियों की पंक्ति में पहुंचा और उस महिला की पंक्ति के साथ साथ चला, जब तक वहां नहीं पहुंच गया जहां ये छोटा बालक था, वे सब उससे दूर खड़े थे। उस बालक को अपनी गोद में लिया, कहा, प्रभु अपने दास को शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। और उसी समय, उसी दिन छोटी सी चुनी हुई अन्ना थी, एक भविष्यद्वक्तनी, वो वहाँ कोने में एक अंधी बैठी थी, अंधी ही भरी हुई, वो यहाँ आती है आत्मा की अगुवाई में, उस भीड़ में, उन स्त्रियों और लोगों के बीच मंदिर में अंदर बाहर हो रहे हैं, जब तक वो उस बालक मसीह के पास सीधी सीधी ना आ गई। यदि पवित्र आत्मा अंधी स्त्री की उस तक अगुवाई कर सकता है, तो उस पेंतिकोस्त झुंड के विषय में क्या है, जिनके पास अपनी आंखें हैं। मैं अब और आगे नहीं बढ़ूंगा, आप वहाँ से आगे जानते हैं। ध्यान दें कि वो कलीसिया कितनी अधिक भयानक उलझन में फिर से होनी चाहिए, जैसा कि उस दिन में ये निश्चित रूप से हुआ, परंतु इसने छोटे से बचे हुओं को हिला दिया, जैसा मैंने कहा। अब जरा ईमानदार हो जाएं, यदि आज हम उस कलीसिया को इस दशा में देखते हैं, तो क्या हम उस समय में फिर नहीं पहुंच गए? अब बाइबल की उन प्रतिज्ञाओं की बातों को देखें जो इस समय कलीसिया में चल रही हैं। हम देख रहे हैं कि संसार में क्या चल रहा है और हम इसे इसके अंत में देखते हैं। अब आइए कलीसिया में देखें। कलीसिया, इसे लूथर की अधीनता में जच्चा की पीड़ाएं उठी। अब हम जानते हैं कि सात कलीसियाई काल हैं, सात संदेशवाहक उन कलीसियाई युगों में प्रकाशित वाक्य के अनुसार। अब जब लूथर आया, निश्चय ही इसने कलीसिया को जच्चा की पीड़ा दी, परंतु इसने लूथर को जन्म दिया, ये ठीक बात है। इसके बाद इसे फिर से परेशानी हुई, इसलिए वेस्ली को लेकर आया, ये ठीक बात है, फिर से लाया और ये पेंतिकोस्टल को लेकर आया। अपने युग का प्रत्येक संदेशवाहक उसने हिला दिया, वचन पर वापस लाया, उनके युग का संदेश, बाइबल के अनुसार संदेश। मेरी एक पुस्तक इसी पर आ रही है, प्रकाशित वाक्य के पहले चार अध्यायों पर टिप्पणी, इसे पढ़ें, जल्दी ही हम इसे छापे खाने से ले लेंगे। और ये बिना किसी संदेह के सिद्ध करती है कि लूथर का संदेश क्या था, न्यायोचित ठहराना, पवित्रीकरण क्या है, प्राकृतिक जन्म में अगला कदम, और फिर पेंतिकोस्टल आते हैं, बिल्कुल ठीक। अब ध्यान दें, हर युग ने कलीसिया को झटका दिया और जच्चा की पीड़ाएं, परंतु उन्होंने क्या किया, जन्म की पीड़ाएं आने के पश्चात बजाय कि वचन के साथ साथ चलते, उन्होंने लोगों का एक झुंड बना लिया, जैसे कि पहले वालों ने किया, ठीक यही, चेलों को हिला देने के पश्चात, तो हम उसे फिर भटका हुआ पाते हैं, तब हम पाते हैं उसके साथ साथ और बहुत से आए अगबूस और बहुत से महान सुधारक आरंभ में, जैसा कि आप प्री नीशियन काउंसिल के नीशियन फादर का अध्ययन करते हैं और पीछे आप सबको वहाँ पाएंगे। हर युग हिलाया गया था, हर बार संदेशवाहक यहोवा यूं कहता है के साथ आता है। अब वो बुरी स्थिति में है वचन के अनुसार जो कभी रही थी। हम लुदिकिया कलीसिया काल में हैं, एक धनी परंतु अंधी की गई कलीसिया युग, जो ये नहीं जानते। पूरी बाइबल में कहीं भी मसीह को कभी कलीसिया से बाहर नहीं किया गया, केवल लुदिकिया काल में। ये बुरे युग में है, सबसे अधिक सड़ी हुई जो कभी थी। कहा, मैं रानी बन बैठी हूँ, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, और तू नहीं जानता कि तू नंगा, अभागा, अंधा, निर्धन, और ये नहीं जानता। जी हाँ श्रीमान। कहा, मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आकर मुझसे आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, ताकि मैं तेरी आंखें खोल सकूँ, और यही है यही है निश्चय ही। परमेश्वर का सुरमा निश्चय ही कलीसिया में दृष्टि लेकर आएगा यदि वो इसके लिए अपनी आंखें खोले कि जो परमेश्वर ने कहा। ध्यान दे अब जल्दी से, अब वो इस स्थिति में है किसी भी संदेह से परे। हम लुदिकिया कलीसियाई काल में हैं। अब उसके संदेश वाहक की प्रतिज्ञा मलाकी 4 अध्याय में है, ये करने की प्रतिज्ञा है और संदेश वचन को वापस लाना है, लोगों को वचन पर वापस लाना है, जन्म होना है, उसे नए जन्म का जन्म देना है मलाकी 4 के अनुसार। आज संसारी कलीसिया में आज दो तंत्र कार्य कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुने, अब मैं ये देखना चाहता हूँ यदि आप इस पर आमीन कहने जा रहे हैं। आज संसार की कलीसिया में दो तंत्र हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं और मेरा ये कार्य पूरा हुआ। हम सब जानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है और नामधारी तंत्र अब दो तंत्र कार्य पर हैं, जैसा कि वे थे याकूब और एसाव, एक आत्मा के पीछे दूसरा शरीर के पीछे। और ये क्या है? एसाव और याकूब माँ के गर्भ में झगड़ रहे थे इसके पहले कि वो जन्म लेते, और ऐसे ही नामधारी और वचन एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं। ये जब से है जब लूथर पहला सुधार लेकर आया। मुझे आशा है ये बहुत सरल है जो कि आप इसे समझ सकते हैं, समझे? ये लोग यदि वे इसे पकड़ लें और इसके साथ बाहर जाएं तो वे अधिक समझदार होंगे। इसके लिए इसे वहाँ लाएंगे जहाँ आप चाहते हैं। मैं इस बीज को डाल देना चाहता हूँ, तब आशा करता हूँ कि ये इसे जीवन में ले आएगा। ध्यान दें, समझे? ये सदा ही रहा है। यही कारण है कि प्रसव पीड़ा सहन कर रही है, क्योंकि उसके अंदर एक लड़ाई है। वहाँ एक एसाव है, संसार का एक मनुष्य, बहुत ही धर्मी, और वो ठीक है, अच्छा व्यक्ति है, शुद्ध आचरण जहाँ तक मैं जानता हूँ, परंतु वो जन्म सिद्ध अधिकार के विषय में कुछ नहीं जानता। वो इसी प्रकार जन्मा है, वो ऐसा ही बना है। और याकूब, मैं चिंता नहीं करता कि वो क्या है, वो उस जन्म सिद्ध अधिकार को चाहता है, वो आत्मिक है। और आज वे दो कलीसियाएं के गर्भ में हैं, एक बड़ा महान तंत्र बनाने की तैयारी के यत्न में है। कलीसियाओं की विश्व परिषद कहलाती है, और कलीसिया के गर्भ से दो बालक आ रहे हैं। आप मेरे शब्दों को ध्यान कर लें। संसार का वचन को वचन दुल्हन कलीसिया ही उत्पन्न करनी है। एक कलीसिया इसमें से जन्म लेने वाली है, मसीह की एक दुल्हन। वे जो उन सारे कालों में सो गए, वे उस दुल्हन को बनाएंगे जो वचन से निकल कर आती है, जैसे आपके पैरों की तरफ से आपके सिर की ओर। वो बड़ी बड़ी महान और आपको अधिक और अधिक और आदि आदि। जैसे कि शरीर बढ़ता है, वैसे ही मसीह की देह बढ़ती है, और तब अंत में इस पर सिर आएगा, इसका सिर आएगा। अब यदि हम ध्यान दें, क्योंकि ये सब सिर से जुड़ा है, सिर ही घुमाना खींचना करता है, परंतु ये सारे तंत्र उसमें नहीं होंगे, क्योंकि वो एक तंत्र है और नहीं जन्म सकता। एक गोखरू गेहूं को जन्म नहीं दे सकता, परंतु वे दोनों एक ही खेत में होंगे, एक ही जल से सिंचाई हुई, एक ही सूर्य का उजियाला, एक वचन है, एक वचन नहीं है। और वे दोनों लड़ रहे हैं, पहले सुधार से ही लड़ रहे हैं, वे लड़ रहे हैं। अब मुझे इस पर और आगे नहीं जाना है। क्या मुझे निश्चय ही, आप जानते हैं मैं क्या बातें कर रहा हूँ? जी हाँ, हम लोग वहीं पर हैं, आप वहीं हैं। एक तंत्र, आप कौन से तंत्र में हैं? अब जरा कल्पना करें, यदि आप पहले उन दिनों में जिए होते, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के झटकों के अधीनता में, और वचन जो आता, तो आप वहाँ किसके पक्ष में खड़े होना चाहते? भाई, आज आपके पास वही विकल्प है। वो वहाँ सिद्ध वचन वापस लाने को तय है, और वचन वचन की दुल्हन के लिए आ रहा है। जैसे एक स्त्री पुरुष का एक भाग है, उसमें से ली गई है, इसलिए कलीसिया वचन को धारण करने वाली कलीसिया होगी। बाइबल का हर वचन, ना कि तंत्र, धर्म सिद्धांत या उसमें कुछ भी मिला हुआ, ये पूरी रीति से शुद्ध पवित्र पवित्र वचन ठीक है। और लूथर के ज्योति के दिनों में जब वो कलीसिया ने लूथर की सामर्थ को रोका, वो पीड़ा में चली गई, परंतु वो आया कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और ये प्रभु भोज नहीं है। अब हम पाते हैं कि जॉन वेस्ली के दिनों में उसे फिर से पीड़ा उठी, परंतु वहाँ वेस्ली का जन्म हुआ था, परंतु उसने क्या किया? वापस चला गया जैसे माँ ने किया। तब पेंतिकॉस्ट के दिनों में आपके माता पिता उन बातों से बाहर निकल कर आए, और उससे घृणा की। वे सड़कों पर चले गए। आपकी माँ के पास मोजे नहीं थे, पुराना कनस्तर बजा रही थी और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बात कर रही थी और थोड़े पुराने गिटार। वे सड़क के किनारे गाड़ियों में रास्तों पर सारी रात जेल में पड़े रहे और हम इतने ढीठ और सीधे वापस संस्थाओं में चले गए और अपने आप को वहीं गंदा बना लिया और उन्होंने अपने बालकों को वहीं वापस खींच लिया जहाँ से वे निकले थे। वे अपनी कब्र में करवटें बदल रहे थे। वे आपसे ले जाएंगे। मैं जानता हूँ कि यह कठोर बात है परंतु ये सत्य है। आप कहते हैं मैंने सोचा था कि आप लोगों से प्रेम करते हैं। यदि प्रेम सुधारने वाला ना हो तो फिर आप कैसे प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं? प्रेम सुधारने वाला होता है और मैं संसार से प्रेम करता हूँ। मुझे परमेश्वर की कलीसिया के लिए जलन होती है और इन तंत्रों को देखते हुए जो कि धर्म सिद्धांतों में बंधे हुए हैं सड़ गए हैं और परमेश्वर अपने वचन के सत्य होने की घोषणा कर रहा है फिर भी वे उसे ही पकड़े हैं। आमीन। ये सत्य है। आप जानते हैं भाई बहनों, ये सत्य है। ये बस यही है बताने के लिए। ये साधारण मार्ग है। ये ग्रीक यूनानी आदि का विश्लेषण नहीं है, बस साधारण समझ को दर्शा रहा है। निश्चय ही आप इसे समझ सकते हैं। दो और दो चार होते हैं, समझे? अब हम ये जानते हैं कि ये ठीक बात है। अब वचन को दुल्हन उत्पन्न करनी ही है, परंतु पुराना तंत्र उसे अपनी प्रतिछाया बनाए रखनी है। इसे एक ऐसा उत्पन्न करना है जिसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया। मुझे अनुभव हो रहा है कि ये आ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे पागल नहीं समझते। भाई यदि मैं हूँ तो मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है बजाय वैसे के। मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। हो सकता है मैं संसार के लिए समकी हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं जानता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। देखिए, ये मृत बालक को जन्म देने वाले हैं। एक पुरोहितवाद का तंत्र जो कि सारे नामधारियों को एक साथ लाएंगे और ऐसाओं को जन्म देंगे जो याकूब से घृणा करता है। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप एक मृत जन्म को देखते हैं, एक मरा हुआ नामधारी। वे बस एक साथ जा रहे हैं। ओ वचन के विश्वासियों, इसे मेरे संदेश में दो। मुझे सुनो, ना कि मेरा संदेश परंतु उसका संदेश जिसे उसने कठोरता के साथ सत्य घोषित किया है। आपको किसी को तो चुनना है। इसके बाद आप शांत नहीं बैठ सकते। आपको अपना विकल्प लेना है। स्मरण रखें उस दिन वहाँ वेस्टवर्ड एचओ में मैं उस प्रातः नाश्ते पर कैसे प्रभु ने मुझे गेहूं को देखने दिया, कैसे ये लूथर से वेस्ली से होता हुआ आया और फुंदना और आदि आदि और छोटा सा निकलकर हर कलीसिया डंठल के दाने में प्रतिनिधित्व करती है। वे सीधे गेहूं में चले गए जैसा कि ये था और वहाँ एक छोटा सा छिलका था, बिल्कुल वास्तविक गेहूं के दाने जैसा दिखाई पड़ा। जब आप जाकर देखते हैं, यदि आप अपने गेहूं को नहीं जानते, आप कहेंगे कि आपको गेहूं मिल गया परंतु ये तो बस छिलका है। तब आप छिलकों को खोलते हैं तो वहाँ गेहूं बिल्कुल नहीं है। वहाँ पीछे एक छोटी सी कली आ रही है। आप एक कांच लेकर के और इसे देखें। और जब पहले पेंतिकौसल इसे लेकर बाहर आए, ये इतना समीप था। यीशु ने मत्ती 24:24 में कहा, यदि हो सके तो ये चुने हुए को भी धोखा दे देगा। इसे क्या करना था? दाने की सहायता करना। क्या ये ठीक बात है? इधर देखिए, पत्ती दाने के समान नहीं दिखाई पड़ती जो चली गई, ना ही फुंदनी, परंतु ये बहुत उसके समान है। छिलका सारा का सारा इसके समान है, परंतु अब भी ये गेहूं नहीं है। ये गेहूं को लाने वाला है। क्या आप नहीं देखते कि कैसे वे संदेश जन्म की पीड़ा के साथ आए, परंतु जीवन ने उसे वहीं छोड़ दिया कि अगले संदेश में जाए। जीवन लूथर के संदेश से निकल करके वेस्ली के संदेश में चला गया, वेस्ली के संदेश से उठकर पेंतिकौसल के संदेश में चला गया। अब ये फिर वो समय है कि छिलके को छोड़ दे। क्या माजरा है? वहाँ प्रकृति हर रूप में इस बात की घोषणा करती है कि ये सत्य है। अब आप देखिए, आप क्यों सोचते हैं कि मैं सनकी हूँ? हो सकता है मैं हूँ जैसा कि मैंने कहा, परंतु मुझ में कुछ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। मैं ये कभी बाहर से नहीं, मैंने कभी इसे बाहर से नहीं अपनाया। ये मेरे अपने चुनाव से नहीं है, ये परमेश्वर का है और वो इसकी पुष्टि करता है ये सिद्ध करने के लिए कि ये सिद्ध सत्य है, इसे सत्य बनाता है। ना कि जैसे मेरे पास लूथर और वेस्ली पेंतिकौसल या बैप्टिस्ट या जो कोई भी हो, उनके विरोध में कुछ नहीं है। वो तंत्र जिसके विरोध में मैं हूँ, क्योंकि वचन इसके विरोध में है, ना कि लोगों के। आज इन पादरियों और क्लेरिजी मैन जो यहाँ बैठे हैं, इन्हें देखिए, यदि ये तंत्र की सुनते तो ये यहाँ नहीं होते, परंतु इनके पास साधारण साहस है कि परमेश्वर के वचन को बाहर निकल करके सुने और इसे स्वीकार करें। हालेलुया का अर्थ है कि हमारे परमेश्वर की महिमा हो। ये आपको आघात नहीं पहुंचाएगा, मतलब है कि ऐसा ही हो। मैं इसका विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता और जानता हूं कि ये सत्य है, ये प्रमाणित सत्य है। किसी दिन आप पाएंगे, हो सकता है देर हो जाए। अब ध्यान दें, बाइबल ने कहा उसकी पत्नी ने स्वयं को तैयार कर लिया है इस युग के अंत में। कैसे वो अपने आप को तैयार करेगी कि उसकी पत्नी हो जाए? वो क्या करती है? उसने किसी प्रकार के वस्त्र पहन रखे हैं, उससे अपने ही शब्द, उसने उसकी रास्तबाजी के वस्त्र पहन रखे हैं। यही है, ये ठीक बात है, समझे? दर्शन, ध्यान दें। अब बस बंद कर रहा हूँ। बंद करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ये कहने की अगुवाई हो रही है। अब यहोवा क्यों कहता है, यदि मनुष्य ये बिना अपने विचार में रख कर कहेगा तो वो एक ढोंगी होगा और इसके लिए उसे नरक में जाना होगा। ये ठीक बात है। यदि वो लोगों के झुंड को लेने का यत्न कर रहा है इस प्रकार से अच्छे लोग और उन्हें धोखा देता है, क्यों? वो एक शैतान मनुष्य की देह में है। परमेश्वर उसका पक्ष कभी नहीं लेगा। आप सोचते हैं परमेश्वर शैतान का सम्मान करेगा या एक झूठ का? कभी नहीं, समझे? ये उसके सिर के ऊपर से निकल जाएगा और वे इसे नहीं लेंगे। वो चुनौतियों को बाहर निकाल लेगा। युगों से होते हुए सारे भविष्यवक्ताओं को देखें, उसने चुनौतियों को कैसे लिया। देखिए, सुधारों में से आगे बढ़ते हुए, जैसे कि रोमन कैथोलिक कलीसिया ने जॉन ऑफ आर्क को जीवित जलाया जादूगरनी होने के नाते, ये ठीक बात है। बाद में उन्होंने पाया कि वो नहीं थी, वो एक संत थी। निसंदेह उन्होंने प्रायश्चित किया, पादरियों की कब्री खोदी और उन्हें नदी में बहा दिया। परंतु आप जानते हैं कि ये परमेश्वर की पुस्तक में ठीक नहीं होता। नहीं, उन्होंने संत पैट्रिक को भी कहा, आप देखिए, और वो भी बहुत कुछ मेरे समान था। इसलिए हम ध्यान देते हैं, उसके बालकों को देखें, उसके स्थान को देखें और देखें कि कितने मार डाले। उनकी शहीदों वाली पुस्तक देखें और देखिए वहाँ कितने मार डाले गए। आप समझे, ये ऐसा नहीं है। परंतु लोगों का दावा, वे ऐसा नहीं करते। ये जो परमेश्वर ने कहा और सिद्ध किया कि ये सत्य है, सारी बातें सिद्ध की, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो। अब हम पाते हैं यहाँ कुछ महीनों पहले एक प्रातः मैं घर के बाहर घूम रहा था, मुझे दर्शन आया। और मैं यहाँ किसी को भी चुनौती देता हूँ जो इन वर्षों में जानते हैं कि किसी भी समय कहे कि प्रभु ने मुझसे कभी यहोवा यूँ कहता है कहलवाया और परंतु वो ना घटित हुआ हो। कितने जानते हैं कि ये सत्य है? अपने हाथ खड़े करें। ठीक है, क्या कोई विरोध में बोल सकता है? ये सत्य है। संदेशवाहक पर ध्यान न दें, संदेश को देखें। ये है, ये बात है, समझे? ये वो नहीं है। इस छोटे बिना बाल वाले पर ध्यान न दें। आप व्यक्ति को जानते हैं, ये बस एक साधारण मनुष्य है और सब एक से हैं। परंतु ध्यान दें कि क्या हो रहा है, यही जो घोषणा करता है। अब लोग सब प्रकार की बातें कहते हैं। हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारा गलत है। कोई मनुष्य क्या कहता है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो जो मैं कहता हूँ उसका उत्तर देना है। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि ये सही है या नहीं, और मैं केवल इसी के लिए उत्तरदायी हूँ, न कि कोई और क्या कहता है। मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता। मुझे न्याय करने के लिए नहीं भेजा गया, परंतु संदेश को प्रचार करने के लिए। ध्यान दें, मुझे कलीसिया का पूर्व दर्शन मिला था और मुझे किसी के द्वारा ले जाया गया जिसे मैं नहीं देख सका, और मुझे वहाँ बैठाया गया एक ठहरावा, और मैंने बहुत ही मीठा संगीत सुना जो मैंने कभी सुना होगा। और मैंने देखा साधारण महिलाओं का एक झुंड चला आ रहा है। देखने में लग रही थी कि लगभग 20 की होंगी, और उन सब के लंबे बाल थे और वे विभिन्न वेशभूषाओं में थीं, और वे चल रही थी जैसे कि साधे हुए कदम ताल में उस संगीत के साथ जैसा हो सकता है। और वे मेरे बाएं से घूमकर इधर को, और मैंने उन्हें देखा, और ये देखने के लिए मैंने देखा कि मुझसे कौन बातें कर रहा था, और मैं किसी को ना देख पाया। और फिर मैंने सुना नाचने वालों का संगीत आ रहा है, और जब मैंने दाहिनी ओर से देखा उधर से आ रहा था, और यहाँ वो संसार की कलीसिया आती हैं, और उनमें से कुछ और हरेक का अपना झंडा लिए हुए थे कि वे जहाँ से थे, बहुत गंदे दिखने वाले जो मैंने कभी अपने जीवन में देखे। और जब अमेरिकन कलीसिया आती है, ये भयानक थी, मैंने कभी जो देखी। स्वर्गीय पिता मेरा न्यायी है। उन्होंने भेद बताने वाला स्लेटी स्कर्ट पहना हुआ था, जैसे वे शराब खाने की लड़कियां नंगी पीठ वाली स्लेटी रंग का कागज पकड़े हुए थी, और जैसे हुला नृत्य रंगी हुई छोटे वस्त्र कटे बाल सिगरेट पी रही और मटक रही थी जैसे वे नाचती हुई चल रही थी। और मैंने कहा क्या संयुक्त राज्य की यही कलीसिया है? और आवाज ने कहा हाँ यही है। और जब वे निकल कर गए उन्हें इस प्रकार से पकड़ना पड़ा और जब वे निकल कर गए तो कागज को पीछे लगाना पड़ा। मैंने रोना शुरू कर दिया। बस मैंने सोचा मेरा सारा परिश्रम और सब जो मैंने किया और हर बात जो हम सेवकों ने मिलकर किया। और भाइयों, मैं नहीं जानता कि आप मेरे दर्शनों का कितना विश्वास करेंगे, परंतु ये सत्य है मेरे लिए। ये हमेशा सही सिद्ध हुआ है। जब मैंने ये देखा और देखा कि वे क्या हो रहा है, मेरा हृदय जैसे मेरे ही अंदर टूट गया। मैंने क्या किया है? मैं कैसे इसमें चूक गया? मैं ठीक इस वचन के साथ टिका रहा प्रभु, और मैं ये कैसे कर सकता था? मैंने सोचा आपने क्यों नहीं मुझे पहले ये दर्शन दिया और मुझे वहाँ दिखाते। और मैंने कहा अच्छा, क्या इनका न्याय होगा? उसने कहा पौलुस के झुंड का भी। मैंने कहा मैंने वही प्रचार किया है जो उसने किया है। क्रिश्चियन बिजनेसमैन ने ये लेख दिया है। और मैंने कहा क्यों, ये क्यों इस प्रकार से होगा? मैंने उस वेश्या के झुंड को इस प्रकार से जाते देखा और सबने ऐसे ही वस्त्र पहने हुए थे और अपने को कुमारी यूएसए की कलीसिया कह रहे थे। मैं बस मूर्छित हो गया। फिर मैंने सीधा सीधा एक वास्तविक मीठे संगीत को फिर से आते सुना और फिर वही छोटी दुल्हन फिर से आ रही है। उसने कहा यही जो निकल कर आया है। और जब वो निकल कर चली गई, ये बिल्कुल ठीक वैसी ही थी जैसे पहले वाली थी। परमेश्वर के वचन के संगीत पर सही कदम ताल। और जब मैंने इसे देखा, मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर किए खड़ा था। जब इस पर आया तो रो रहा था। मैं वहाँ अपनी ड्योड़ी पर खड़ा हुआ था, सामने खेतों के पार देख रहा था। क्या उसे वही दुल्हन होना है, उसी प्रकार की, उसी प्रकार के तत्व की बनी हुई जो वो पहली बार में थी? अब मलाकी 4 पढ़ें और देखें। क्या हमें अंत के दिनों में संदेश नहीं मिलना है जो कि बालकों के हृदय को पितरों की ओर फेरेगा, वापस मूल पेंतिकोस्तल संदेश पर, वचन दर वचन? भाइयों, हम यहीं पर हैं। अब इस कलीसिया को चिन्ह मिलना है और ये अंतिम चिन्ह है। हम यहाँ पवित्र शास्त्र में पाते हैं वो महान जच्चा की पीड़ा जो इस लुदिसियन कलीसिया में हो रहे हैं। ये नीरस है, उनकी कलीसिया नया जन्म ले रही है। नहीं, अब दूसरी संस्था कभी नहीं होगी। हर कोई जानता है कि हर बार संदेश आगे बढ़ता है। इन इतिहासकारों से पूछें, संदेश चले जाने के बाद उसमें से एक संस्था निकल कर आती है। ओ एलेक्जेंडर कैम्बेल, हर कोई, मार्टिन लूथर और हर कोई, उन्होंने इसमें से संस्था बनाई। और अधिकांश संदेश केवल लगभग 3 वर्ष चलता है, एक बेदारी। ये 15 वर्षों से चल रहा है और इसमें कोई संस्था निकल कर नहीं आई। क्यों? छिलका अंतिम था, हम अंत में हैं। प्रसव की पीड़ाओं को देखें, देखिए क्या मामला है। थोड़े से बचे हुए बाहर आएंगे, थोड़े से बचे हुए बाहर लाए जाएंगे। और इसी कारण मैं चिल्ला और जोर जोर से धक्का दे रहा हूँ और पृथ्वी पर के हर मनुष्य की कृपा को एक और कर रहा हूँ कि परमेश्वर की कृपा को पाऊँ और उसके वचन पर आगे बढ़ रहा हूँ। वो पीड़ा में है, ये वही बात है कि वो जन्म देने जा रही है। उसने अपना निर्णय लेना ही है। हस्तलेख दीवार पर है। हम देखते हैं कि पृथ्वी जाने के लिए तैयार है, ये ठीक बात है। और हम कलीसिया को देखते हैं, वो इतनी सड़ गई है, वो भी जाने को तैयार है। और उस पर प्रसव पीड़ा छाई हुई है, संसार और कलीसिया दोनों पर। और एक नया संसार जन्म लेने को है और एक नई कलीसिया का जन्म, ताकि सहस्र शताब्दी में जाए। हम ये जानते हैं। ध्यान दें, परमेश्वर ने उसे दिया है, इसे ध्यान से सुने। फिर मैं बंद कर रहा हूँ। उसका अंतिम चिन्ह, उसका अंतिम संदेश, उसका अंतिम चिन्ह, उसका अंतिम चिन्ह, उसे उन स्थितियों में आना है जैसे वो आरंभ में थी, संसार कलीसिया। देखिए वो आरंभ में कैसी थी, उन वर्षों में मलाकी से यीशु के आने तक खाली। अब इसे इन सारे वर्षों में से होते हुए देखें, इसे देखें पीछे की ओर, भ्रष्टाचार जो उन्होंने इसमें किया। पृथ्वी को देखिए, हर बार वो कैसी थी, जैसी नूह के दिनों में आदि आदि। उसी स्थिति में होना एक प्रतीक, और हम ये देखते हैं जैसा नूह के दिनों में था। हम देखते हैं ये सारी बातें एक नमूना है। तब फिर हम एक अंतिम चिन्ह पाते हैं लूका के 17वें अध्याय 28वें पद में। यीशु ने कहा जैसा कि सादोम के दिनों में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, क्योंकि जैसा सादोम में था। अब देखिए, यीशु ने भी यही बाइबल पढ़ी, वही उत्पत्ति हम पढ़ते हैं। अब ध्यान दें, चूके नहीं, वही बाइबल हम पढ़ते हैं जो यीशु ने पढ़ी। और उसने अपनी कलीसिया से कहा, वापस मुड़कर देखो, जब सादोम के दिन फिर वापस आते हैं, व्यभिचारी लोग, मनुष्य प्रकृतिक स्वभाव खो रहे हैं। समलैंगिकों को देखें, आज समस्त संसार में ये कैसे बढ़ रहा है। हाल ही में अखबार में आपको मेरे कार्यालय में आकर माओ की चिट्ठियों को पढ़ें, उनके लड़कों के विषय में समलैंगिकता बढ़ने पर है। मैं सोचता हूँ कैलिफोर्निया अकेले में पिछले वर्ष 20 या 30%। एक बड़ा झुंड, यहाँ तक कि सरकारी लोग भी समलैंगिकता में हैं। आप सरकारी लोग ये जानते हैं, आपकी पत्रिकाएं मैं पढ़ता हूँ, विभिन्न चीजें हुई हैं। मेरे पास पवित्र शास्त्र की सही समझ है, ठीक यही जो परमेश्वर ने कहा घटित होगा। वो जो अन्य भाषा बोले प्रार्थना करे कि अनुवाद कर सके, ये सत्य है। मैंने आपको सत्य बताया है तो परमेश्वर यहाँ पर है, इसकी पुष्टि कर रहा है, ये सत्य है। अब देखिए वो अंतिम संदेश क्या था जो यीशु ने कहा, जैसा सादोम के दिनों में था। अब ध्यान दें, अन्य जाति संसार के जलने के जरा पहले आग। अब समझने का यत्न करें क्या हुआ। वो गुनगुने लोगों का झुंड था, कलीसिया के सदस्य जैसे लूत और उसका झुंड सादोम में। वो एक दूसरा मनुष्य, वो पहले ही निकाला हुआ था, वो वहाँ आरंभ से था ही नहीं। वहाँ अब्राहम था जिसके पास पुत्र आने की प्रतिज्ञा थी। आप समझे तो कहें आमीन, ठीक है। और अब विनाश आए उसके चरम से थोड़ा पहले परमेश्वर अब्राहम पर बहुत से रूपों में प्रकट हुआ। वो एक मनुष्य के समान प्रकट हुआ, वो एक मनुष्य था और वो परमेश्वर तक आया। अब आप कहते हैं वो मनुष्य नहीं था, ये परमेश्वर मनुष्य में था। अब्राहम ने उसे एलोहिम कहा, वो एक मनुष्य था। और देखिए वो अपनी पीठ तंबू की ओर करके बैठ गया और उसने कहा तेरी पत्नी सारा कहाँ है। बोला वो तंबू में आपके पीछे है। कहा मैं जीवन के समय के अनुसार तुझसे मिलने आ रहा हूँ कि मैंने तुझसे प्रतिज्ञा की है। और सारा हंसी और उसने कहा सारा तू क्यों हंसी, समझे। अब ये उन दिनों में होने जा रहा था उस अंतिम चिन्ह को दर्शाने के लिए जिसे अब्राहम ने देखा। चुना हुआ झुंड बाहर निकाला गया सादोम से। अब इस दृष्टांत पर चूके नहीं, आप जो भी करते हैं, वो झुंड जो बाहर निकाला गया वो आरंभ से ही सादोम में नहीं था, परंतु उसमें से दो दूत नीचे सादोम में चले गए। और जब वे वहाँ पहुँचे हम लूत को पाते हैं और उसने उसे पिछड़ी हुई दशा में पाया, सब लैंगिक और भ्रष्ट, और आप कहानी जानते हैं। परंतु वहाँ एक अब्राहम के पास रुक गया, वो एलोहिम था। उन्होंने वहाँ वचन प्रचार किया, वचन प्रचार हो रहे थे, उन्हें अंधा कर रहे थे और वे द्वार को ना ढूंढ सके, यही जो आज है। परंतु वो जो उस निकाले हुए झुंड के साथ था उसने अब्राहम के सामने एक आश्चर्य कर्म किया, ये दर्शाया कि वो कौन था और अब्राहम के साथ था। उसने कहा सारा तू क्यों हंसी इस बालक के विषय, और सारा आगे बढ़ी और बोली मैं नहीं, और उसने कहा परंतु तू हंसी। वो उसे वहीं मार डालता यदि वो अब्राहम का भाग ना होती। इसी प्रकार परमेश्वर हमें मार डालता यदि हम मसीह का भाग नहीं होते। मसीह का अनुग्रह हमें बचाए रखता है हम संदेह करने वाले और भ्रष्ट वचन में। परंतु ध्यान दें कि क्या हुआ। अब यीशु पीठ घुमाकर कहता है, जैसा लूत के दिनों में था वैसा ही अंत के दिनों में होगा, जब मनुष्य का पुत्र स्वयं को प्रकट कर रहा होगा। समझे, बाइबल में सदा एक भविष्यवक्ता मनुष्य का पुत्र है। समझे, वो तीन पुत्र के नाम में आया, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का पुत्र। समझे, और उसने उसके नाम का उच्चारण किया, मनुष्य का पुत्र, क्योंकि उसने वही कार्य किया एक भविष्यवक्ता नबी का। उसने कहा, जैसा ये नूह के दिनों में था जब मनुष्य के पुत्र ने स्वयं को प्रकट करना आरंभ किया, वो अंत का समय होगा। अब आइए एक मिनट के लिए सोचें। संसार के पास कभी भी समस्त संसार में संदेशवाहक नहीं था। हमारे पास फिनी के, सैंकी के, मूडी के, फिनी के, नॉक्स के, कॉलविन के, आदि आदि सारे संसार में कलीसियाओं के संदेशवाहक इन प्रसव पीड़ाओं में रहे हैं। परंतु कभी भी हमारे पास कभी अंतर्राष्ट्रीय संदेश के साथ कोई मनुष्य आज तक नहीं हुआ जिसके नाम का अंत HAM में हो। ABRAHAM जो कि 6 अक्षर है, अब्राहम में 7 अक्षर है। आज हमारे पास इस नाम में एक है GRAHAM, 6 अक्षर और 6 नंबर संसार का है, सृष्टि का दिन। कब कभी संसार के पास ऐसा व्यक्ति हुआ जो लोगों को बुला रहा है, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो, नष्ट हो जाओगे या इससे बाहर आ जाओ। आज तक इस युग में नहीं है। GRAHAM देखिए वो क्या कर रहा है, वचन प्रचार कर रहा है, बाहर वालों को अंधा कर रहा है, बुला रहा है, बाहर आओ, परमेश्वर की ओर से संदेशवाहक। यीशु ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र स्वयं से प्रकट होगा ये घटित होगा। अब ये कहाँ पर है? वहाँ संसार की कलीसिया के अनुक्रम में, और वे इसके लिए उस मनुष्य से बैर रखने लगे हैं।
But remember, there was a group also that was a spiritual group, the Jacob group, not the Esau group. There's a Jacob group was looking for the son that wasn't in that Babylon, and they received a messenger.
परंतु स्मरण रखे, वहाँ एक झुंड भी है जो कि आत्मिक झुंड भी है, याकूब का झुंड, ना कि एसाव का झुंड। वहाँ एक याकूब का झुंड पुत्र की राह देख रहा है जो कि उस बाबुल में नहीं था, और उन्होंने एक संदेशवाहक को स्वीकार किया। समझे, अब्राहम, ABRAHAM, उन्होंने एक संदेशवाहक को ग्रहण किया, और उस संदेशवाहक ने, उसने लीक से हटकर चीजों की ये दर्शाया कि ये अंत का समय था। उसने जो सारा के विचारों में था उसे परख लिया, और यीशु परमेश्वर का पुत्र जो कि देहधारी हुआ ये दर्शा रहा था कि परमेश्वर का आत्मा वापस उस चुने हुए छोटे झुंड में अंत समय में आएगा और स्वयं को उसी प्रकार से प्रकट करेगा। प्रसव पीड़ाएं, ओ भाई समझने की कोशिश करें, एक मिनट के लिए अपने हृदय को खोलें, मसीह को देखें। वही परमेश्वर अब ठीक यहाँ पर है, वही वाला, उसने इन बातों की प्रतिज्ञा की है। अब यदि उनसे प्रतिज्ञा की है तो वो निश्चय ही योग्य है कि उन्हें करे। आइए अपने सिरों को एक मिनट के लिए झुकाएं। मैं चाहता हूँ कि आप जरा गंभीरता के साथ सोचें। पिता, अब ये आपके हाथों में है। मैं जो कर सकता हूँ मैंने सब कुछ कर दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के समझने में सहायता करें। बीज बो दिया गया है, आत्मा का जल इस पर डालें प्रभु, और इसे अपनी महिमा के लिए सींचें। प्रभु यदि मैंने गलती की हो तो मेरा ये अर्थ नहीं है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसका सही अनुवाद इनके हृदयों में करेंगे ताकि ये इसे देख और समझ सकें, इसे प्रदान करें प्रभु। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। इस परमेश्वर जिसने ये वचन प्रचारा है, ये परमेश्वर इस वचन के लिए उत्तरदायी है। मैं केवल इसे कहने के लिए उत्तरदायी हूँ। ये वही है जिसे इसने जीवित करना है, वही परमेश्वर यहाँ पर है। अब बाहर कितने ऐसे हैं जो आवश्यकता में हैं? अपने हाथ उठाएं। क्या उसने इन चीजों के लिए प्रतिज्ञा की है कि अंत के दिनों में करेगा? अब आप मुझे देखें, अब ये पतरस और यहुन्ना के समान है जिन्होंने कहा हमारी ओर देख, जैसे कि देखिए उसने उससे कहा अब तू इधर की ओर देख, कृपया इधर उधर ना घूमें, ये बहुत ही मैं अपने पूरे हृदय से यत्न कर रहा हूँ, वास्तव में श्रद्धा में रहें, समझे। आप में से प्रत्येक एक आत्मा है, निसंदेह जब आप हिलते हैं आप एक इकाई हैं। मैं लोगों के विश्वास को पकड़ने का यत्न कर रहा हूँ। एक छोटी महिला पास से निकली और उसके वस्त्र को छुआ, जाकर बैठ गई। यीशु ने उसे बताया कि उसकी क्या परेशानी थी और वो चंगी हो गई। और अब उसने ये फिर से करने की प्रतिज्ञा की है, मनुष्य का पुत्र स्वयं को प्रकट करेगा जैसे उसने सादोम में किया। संसार उसी स्थिति में है, कलीसिया उसी स्थिति में है। अब क्या परमेश्वर ने अपने वचन को बनाए रखा? देखिए यदि उसने किया या नहीं। ओ हमारे पास चिन्ह है, कूदना, अन्य भाषा में बोलना, भविष्यवाणी और आदि आदि, परंतु प्रतीक्षा करें, वहाँ एक दूसरा चिन्ह है। ओ हमारे पास बहुत सी शारीरिक नकलें हैं जो कि वास्तविक वाले को प्रकट करता है। कोई भी नकली डॉलर असली वाले को प्रकट करता है। अब आप प्रार्थना करें, आप विश्वास करें। मैं आपको ये करने के लिए चुनौती देता हूँ, आप देखिए और इसका विश्वास करें जो मैंने आपको बताया है। कितना इसका सत्य होने का विश्वास करते हैं? ध्यान करें, आप कौन हैं, आप कहाँ पर हैं? मैं बस हर कोई यहाँ जहाँ तक मैं जानता हूँ बिल्कुल अपरिचित है, सिवाय बिल डाउच और उसकी पत्नी जो यहाँ बैठे हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं इस प्रचारक को जो यहाँ जर्मनी से है बैठा है जानता हूँ, और भाई और दो या तीन लोगों को यहाँ बैठे हैं। कोई वहाँ जो पीछे मंडली में, वहाँ पीछे देखें। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि विश्वास करें जो मैंने आपको बताया है सत्य है। उस विषय में क्या है जब प्रभु का सरदूत वहाँ उस नदी पर नीचे उतरा 33 वर्षों पहले और ये टिप्पणी की, मुझे कैसे मालूम हुआ? और मेरे अपने पास्टर ने मुझे कलीसिया से बाहर कर दिया, कहा बिली ये तुम्हें दुःस्वप्न हुआ था। मैंने कहा डॉक्टर डेविस दुःस्वप्न कुछ नहीं, ये आपकी मनोस्थिति जो आप रखते हैं, आप मेरा फेलोशिप का कार्ड वापस ले सकते हैं। मैं समझ गया कहीं तो कोई होगा जो इसका विश्वास करेगा। परमेश्वर संदेश नहीं भेजेगा जब तक कि कोई उसे ग्रहण करने वाला ना हो। ओ निश्चय ही जब मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने को गया तो ये बहुत बढ़िया था, परंतु जब मैंने आप लोगों को सत्य का वचन बताना शुरू किया तो ये अलग बात हो गई। आपको जानना चाहिए हर संदेश इसी प्रकार से रहा। यीशु बहुत आश्चर्यजनक था जब उसने कलीसिया में जाकर लोगों को चंगा किया और सब कुछ, परंतु एक दिन जब वो बैठ गया और बोला मैं और मेरा पिता एक हैं, ओ ये हो गया। जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। उसने इसकी व्याख्या नहीं की, वो देखना चाहता था कि उसकी ओर कौन खड़ा होगा। ठीक है, तुम क्या सोचते हो? एक भीड़ डॉक्टर आदि के साथ कहते हैं ये मनुष्य एक क्यों, ये एक नरपिशाच है, इसका मांस खाएं और इसका लहू पिएं। उसने इसकी व्याख्या कभी नहीं की, उसने इसकी व्याख्या कभी नहीं की, परंतु अब भी वो वचन उन चेलों को पकड़े हुए था। उन्होंने चिंता ना की, वे इसे नहीं समझ पाए, जो भी है उन्होंने इसका विश्वास किया, समझे। वे जान गए थे कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को देखा था, वे जानते थे कि यही था। उसने कहा ये वही है जो मेरी गवाही देते हैं। ठीक यहाँ पुरुष और स्त्रियाँ बैठी हैं, अपने हाथ उठा रखे हैं। अब आप मुझे हर धर्मी कह सकते हैं यदि आप चाहें तो, परंतु वही अग्नि स्तंभ जिसने इसराइल के बालकों की अगुवाई जंगल में की, वो ठीक उस स्त्री के ऊपर है। अब स्मरण रखें, यीशु ने कहा अब थोड़ी देर के बाद संसार मुझे और ना देखेगा तो भी तुम मुझे देखोगे। मैं परमेश्वर से निकला हूँ, परमेश्वर के पास जाता हूँ। उसके मृत्यु और गाड़े जाने के बाद उसने यहूदियों से कहा, उसने कहा मैं वही चट्टान था जो जंगल में था, वो वही अग्नि स्तंभ था जो मैं जो हूँ सो हूँ, ये मैं हूँ कौन था? वो अग्नि स्तंभ जो जलती हुई झाड़ी में था, क्या ये ठीक बात है? और वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, कहा मैं परमेश्वर से निकला हूँ, वापस परमेश्वर के पास जाता हूँ ताकि पवित्र आत्मा के रूप में वापस आऊँ। और आज वो यहाँ हमारे साथ है, इसके वैज्ञानिक चित्र लिए गए हैं, वो यहाँ है। वैज्ञानिक चित्र से भी अधिक प्रमाणित हो या कोई भी चीज इसे सिद्ध करने के लिए वो यहाँ है, क्योंकि ये वो है, मैं मनुष्य का पुत्र इस दिन में प्रकट होगा। अब वो वहाँ पर है, मैं ठीक उसको देख रहा हूँ। आप कहते हैं क्या आप उसे देख रहे हैं? यहुन्ना ने भी उसे देखा परंतु बाकियों ने नहीं देखा। देखिए अब इसे सिद्ध करने के लिए, वो स्त्री मेरे लिए अपरिचित है, मैंने इसको अपने जीवन में कभी नहीं देखा, परंतु उसके एक हाथ में कुछ गड़बड़ है जिसके लिए वो प्रार्थना कर रही है। क्या ये ठीक बात है महिला? इसके लिए आपका ऑपरेशन भी हुआ है, आपसे अगला आपका पति बैठा है, आप यहाँ से नहीं है, आप कैलिफोर्निया से है, आपका नाम रोलैंड है। श्रीमान आपके पेट की गड़बड़ समाप्त हो गई है, आपके पेट में गड़बड़ थी क्या नहीं, ये सब चला गया, आपका पैर अच्छा हो गया। उस दिन में मनुष्य का पुत्र यहाँ इधर से होते हुए एक पुरुष बैठा है, वो अश्वेत पुरुष, उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है, वो एक जी हाँ वो काम जो वो करता है, वो कार के विषय में कुछ करता है, कार की पॉलिश, कार पर मोम परत चढ़ाने वाला, ठीक है। आपकी आंखें खराब हो रही हैं, आपने बस विश्वास किया है क्या नहीं, कुछ अजीब सा आपको हुआ, आपका पहला नाम फ्रेड है, ये ठीक बात है, आपका अंतिम नाम कौन है, ये ठीक बात है, अब आप विश्वास करते हैं, अब आपकी आंखें आपको और परेशान नहीं करेंगी। मैंने इस मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो पुरुष जो वहाँ पीछे है वो भी यहाँ से नहीं है, कैलिफोर्निया से है, पीठ में गड़बड़ है। श्री ओन्स, आप ही, प्रभु यीशु आपको चंगा करता है।
All things are possible to them that believe.
मैंने इस मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इसके विषय में कुछ नहीं जानता, मैं बस ज्योति के साथ साथ चल रहा हूँ जहाँ ये जाती है। यदि आप विश्वास कर सकें, वे जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। ये छोटा व्यक्ति यहाँ बैठा है, इसे हर्निया है, चश्मा पहने हैं, सिलिटी सूट, ब्रेड, परमेश्वर आपको चंगा करता है। यदि आप इसका विश्वास करें, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? ठीक है, मैंने अपने जीवन में इसे कभी नहीं देखा। उससे उधर श्रीमती होल्डन बैठी हैं, आंखों की परेशानी है, मैं महिला को नहीं जानता, अपने जीवन में इसे कभी नहीं देखा, परंतु ये सत्य है, समझे? यदि आप विश्वास कर सकती हैं, बहन आप किस लिए रो रही हैं? आपको अधीरता, खांसी, हृदय रोग है, आप विश्वास करती हैं परमेश्वर आपको चंगा करेगा? आप आखिरी कुर्सी पर बैठी हैं। यदि आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं, तो यीशु मसीह आपको चंगा करता है, आपकी सारी अधीरता चली जाएगी, आप अनुभव करेंगी आप सही अवस्था में हैं, चेतना आपसे झूठ बोल रहा है, आप इसे स्वीकार करती हैं? अब आप अपना हाथ उठाएं, कहें मैं इसे स्वीकार करती हूँ, तब ठीक है, ये समाप्त हो गया। क्या ये कलीसिया प्रसव पीड़ा से होकर निकल रही है, क्या आप उसकी उपस्थिति में अपना चुनाव नहीं करेंगे? मैंने आपको ठीक ठीक वचन दिखा दिया है, जो उसने कहा है वो उसे करेगा। इस भवन को छानते हुए किसी से भी पूछें, जो कभी भी प्रभावित हुए या बातें की या जो भी था, और देखें यदि मैंने कभी किसी को देखा, उन्हें जानता हूँ या उनके विषय में कुछ भी। आप सोचते हैं एक मनुष्य ये कर सकता है? ये बिल्कुल असंभव है कि ऐसा घटित हो। अच्छा, ये क्या है? मनुष्य का पुत्र। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से अधिक तेज है, आत्मा को वार पार हृदय के विचारों को परखता है। ठीक वैसे ही जैसे ये तब जब वो यहाँ पृथ्वी पर देहधारी हुआ परमेश्वर के पुत्र में, अब ये परमेश्वर का पुत्र होते हुए प्रकट हुआ, जैसे कि वो दुल्हन को उस तंत्र से बाहर बुला रहा है, इससे बाहर आओ, अलग हो जाओ, परमेश्वर ने कहा है उनकी अशुद्ध वस्तुओं को न छुओ और परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करेगा।
If you are, stand up to your feet and say, I will, by God's grace, accept it right now for everything that's in me.
क्या आप तैयार हैं कि आप अपना सारा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दें? यदि आप हैं तो अपने पैरों पर खड़े होकर कहें, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से इसे अभी स्वीकार करता हूँ, हर चीज से जो मुझ में है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आप उसका विश्वास करते हैं तो फिर अपने हाथ उठाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें। अपनी गलतियों को मान लें। प्रसव पीड़ाएं, मरना कठिन है, परंतु अभी मर जाएं और अपने अविश्वास से बाहर आ जाएं, इससे बाहर आएं। ये परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ है, वैसे ही जैसे जब यीशु पृथ्वी पर आया था, ये फिर से यीशु मसीह आपके मध्य में है, सिद्ध हुआ। अब्राहम को तुरंत पुत्र की प्राप्ति हुई, प्रतिज्ञा का पुत्र इस घटना के घटने के बाद, और यीशु फिर आ रहा है, ये उसका आत्मा है, वो पृथ्वी के बहुत समीप है, आने के समीप है कि वो आपको लेने के लिए तैयार है। यदि आप उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, अब अपने हाथ उठाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, सारे याजक वेदी पर आ जाएं, लोगों को रोने दें, होने पाए अग्नि स्तंभ और बादल स्तंभ आज लोगों में समा जाए और उन्हें संयमी बना दे प्रभु इस बात के अनुभव के लिए जीवित सामर्थ्य परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु इसे प्रदान करें। मैं इनमें से प्रत्येक के लिए ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रत्येक को पवित्र आत्मा से भर दें, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है प्रभु, होने पाए इस अभियान की ये बेदारी, ये सभा एक महान सामर्थ्य पवित्र आत्मा के उंडेले जाने में फूट पड़े। होने पाए बीमार चंगे हो जाएं, अंधे देखें, अपाहिज चलें। होने पाए जीवित परमेश्वर का प्रगटीकरण लोगों के बीच में आए, जैसा कि ये इस दोपहर बाद और लोग इसे ग्रहण कर सकें। मैं ये यीशु के नाम में मांगता हूँ। अब अपने हाथ उठाएं और उसको महिमा दें, और जो आपने मांगा है उसे प्राप्त करें।